आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु यीशु, बड़े झुंड का गड़रिया, प्रभु हम तेरे प्रेम के जिसको तूने हमारे हृदय पर उंडेला है उसके हम इतने कर्जदार हैं, जिसको कि हम कभी भी नहीं चुका सकेंगे। हम आपकी उपस्थिति में जैसे कि सिर झुकाए खड़े हैं, अपने आप को अयोग्य अनुभव करते हैं। आपसे मांगते हैं कि आप हमारी सारी गलतियों और पापों को शुद्ध कर दें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप आज हमारे शरीरों में शक्ति प्रदान करेंगे। बहुत से बीमार और दुखी हैं, जैसा कि हमें इन रुमालों द्वारा दिखाई पड़ता है, और बहुत से निवेदन और फोन द्वारा आ रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि हम संसार के इतिहास का अंत कर रहे हैं और जल्द ही समय अनंतता में विलीन हो जाएगा, और हम उस समय के लिए तैयार होना चाहते हैं। और इसलिए हम आज प्रातः यहाँ उस तैयारी के लिए जमा हुए हैं जो उस समय के लिए है। और मुझे बताया गया है प्रांत के एक छोर से दूसरे छोर तक इस प्रातः टेलीफोन द्वारा संदेश की व्यवस्था है, और जहाँ कहीं भी हमारी आवाजें जा रही हैं, होने दे कि वो छोटा भी समूह आशीषित होवे, के बीच में जो बीमार हैं उन्हें चंगा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके प्राणों को हर बुराई से शुद्ध करेंगे, और आज इस प्रातः टबरनेकल में हमारी सहायता करें ताकि हम भी इस विशेष अधिकार का आनंद ले सकें। और हम निवेदन करते हैं कि आज आप अपने लिखित वचन द्वारा हमसे बात करेंगे, जैसा कि हम संपूर्ण राष्ट्र में जमा हुए हैं, होने दे कि आत्मा हमें उन्हीं चीजों को प्रकट करे जिनकी हमें आवश्यकता है। हम अनुभव करते हैं कि हम छोटे लोग हैं, परंतु छुड़ाए हुओं के बीच में बैठे हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह का विश्वास कर चुके हैं। ये चीजें हमें प्रदान करें, और जब हम इस सभा को समाप्त करके और पूरे प्रांत में अपने भिन्न भिन्न घरों को जाते हैं, उन्हें दे कि हम भी अमाउस वालों की तरह कह सकें, क्या जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था तो क्या हमारे हृदयों में उत्तेजना न हुई। पिता, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी मैं कहूँगा निश्चय ही वो इन मसीहों के लिए जो राष्ट्र में फैले हुए संचार व्यवस्था से सुन रहे हैं अब पर्याप्त होगा, वो काफी ना होगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैं कहकर कि किसी की कोई भला कर सकूं, क्योंकि हम सब एक ही श्रेणी के हैं, हम मरणहार मनुष्य हैं। परंतु महान पवित्र आत्मा बोले ऐसा हो कि वही वचन को ले कर हम पर स्वयं को प्रकट करे। हम अब इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यीशु के नाम में आमीन। आप लोग बैठ जाएं। एक प्रकार से मैं अपने में अचंभित हूं। मैंने अपनी पत्नी को बताया यदि वो टूसन में सुन सकती है। जब मैं वापस आया तो मैंने सोचा भी ना था कि मैं कोई सभा लूंगा। मैं तो अपने कपड़े भी नहीं लाया, और मैंने अपनी पुत्रवधु से कहा था, उसने मेरा कोट प्रेस कर दिया। मैंने कहा मुझे पुलपिट पर खड़ा होना है। उन्हें नहीं मालूम कि पैंट अलग तरह की है और कोट अलग प्रकार का है। ये तो वो है जो मैं घर में पहनता हूँ, परंतु मैडा ने मेरी कमीजें प्रेस करी थी और हर चीज तैयार रखती है। मैं कभी चिंता नहीं करता हूँ। अब हमारे पास एक निवेदन है कि एक बहुत ही प्यारा भाई, और मैं सोचता हूँ कि वो प्रेस कोट में है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो इस संचार व्यवस्था से प्रेस कोट एरिजोना में जुड़ा है। बहन मर्सियर के पिता भाई कॉगिन्स जब इस सभा के लिए आ रहे थे तो दिल के दौरे के कारण अस्पताल में ले जाना पड़ा, और भाई जूनियर जैक्सन भी, मैं सोचता हूँ वो अगले रेडियो या अगले टेलीफोन संचार जो क्लार्कविले या न्यू एल्बनी में है, उनके पिता भी अस्पताल में हैं। मैं समझता हूँ उनका एक गंभीर जिगर के कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए हम उन्हें अवश्य अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। और अब यहाँ दूसरे भी हैं, परंतु हम अधिक समय नहीं लेंगे। परमेश्वर उनके विषय में सब कुछ जानता है, इसलिए अब आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, जैसा कि वो प्यारा बुजुर्ग भाई कॉगिन्स झुर्रीदार हाथों वाला व्यक्ति, इस क्षेत्र का अनुभवी योद्धा, आज प्रातः अस्पताल में दिल के दौरे से पीड़ित है। परमेश्वर, वो बूढ़ा हृदय बहुत से कष्टों से गुजरा है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसकी सहायता करें। वो हम सब की तरह जीवन को प्रेम करता है और वो जीवित रहना चाहता है। इसे ग्रहण करें प्रभु परमेश्वर, इसे ग्रहण करें। हम सारे राष्ट्र में यीशु के नाम में उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उसे चंगा करेंगे और उसे बाहर निकाल लाएंगे। हम विश्वास करते हैं आप करेंगे और वो सीधे सभा में आएगा। हम भाई जैक्सन के प्रिय पिता के लिए, जो कि अब मृत्यु के पास हैं, प्रार्थना करते हैं, और जो जूनियर जैसे एक अच्छे लड़के को संसार में लाए। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें चंगा करेंगे। मैं जानता हूँ कि ये असंभव प्रतीत होता है। दवा वाले डॉक्टर, वे नहीं जानते कि ऐसी स्थिति में क्या करें। परंतु हम भाई हॉल को भी याद करते हैं, जबकि लूजविला के सबसे बढ़िया डॉक्टर ने कह दिया था कि इनके पास जीवन के कुछ घंटे शेष हैं। जिनके जिगर में कैंसर था, वो आज भी जीवित हैं। ये 25 वर्ष पहले की बात है। ये आपके अनुग्रह के कारण है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भाई जैक्सन को भी चंगा करेंगे। प्रभु, आपकी दया और अनुग्रह उनके साथ हो। और ये सब रुमालों और कपड़ों का बड़ा ढेर जो यहाँ प्रार्थना निवेदन के लिए यहाँ रखा है, पिता, आप इन सब को जानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन सब को चंगाई प्रदान करेंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज प्रातः चलने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि पिछले रविवार जब मैं सबसे पहले यहाँ पर आ रहा था और उसके बाद हमने फिर घोषणा की, तो मैं आया और भाई नेविल ने मुझे बोलने को कहा। और तब हमने आज की घोषणा की और ये बाहर लोगों को सूचित नहीं कर पाए। और अब हमारे पास ये टेलीफोन संचार व्यवस्था है जो कि बहुत ही बढ़िया है। लोग अपने घरों में और अपने गिरजों में इकट्ठे होकर या जैसे भी इस आराधना सभा को सुन सकते हैं। मैं इसकी सराहना करता हूँ। और अब मैं यहाँ पर पिछले सप्ताह के बहुत से निवेदन रखे देख रहा हूँ, जिसके लिए पिछले रविवार मैंने संदेश में कहा था। मुझे लगता है मैं भूल गया कि मैंने अभी संदेश का क्या नाम दिया है, लेकिन मैंने कुछ आपके कर्ज चुकाने के विषय में कहा था। और आप जानते हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या कहते हैं, ये बहुतों द्वारा गलत समझा जाता है। नहीं, इसका कारण ये नहीं है कि वे गलत समझना चाहते हैं, परंतु आप ही कुछ गलत समझ गए। और अब किसी ने कहा, क्या हमें कार खरीदनी चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला, या बाइबल में ऐसा है कि किसी व्यक्ति में से कुछ उधार ना। जिस कर्ज को आप चुका सकते हैं, चुका दें। का ये नहीं कि किसी व्यक्ति से हम किसी भी प्रकार के देनदार ना हो। का ये अर्थ नहीं कि हमें अपना किराया देना होता है, टेलीफोन बिल देना होता है और बहुत कुछ देना होता है। हमें उनका देना होता है और हम चुकाते हैं। परंतु जो पुराना लंबा उधार हो, जो हम दे सकते हैं, उसे चुका दें, समझे। किसी भी चीज का अपने ऊपर इस प्रकार का बोझ लेकर ना जाएं। मुझे याद है जब मैं लड़का था तो एक बार बीमार हो गया था। जब मैं अस्पताल से बाहर निकला तो मुझ पर $2,000 का कर्जा था। श्री स्विनीगर, जिनकी दवाई की दुकान हुआ करती थी, उनके दवाई के मुझे $300-400 के बिल चुकाने थे। वो तो मुझे जानते तक ना थे। और वो व्यक्ति, मैं उसके पास गया, मैं उसे जानता ना था, और उसने जैसा भी हो दवाइयां भेजता रहा था। उसने दवाई देने से कभी मना नहीं किया। और मैंने कहा, मैं आपका देनदार हूँ। और मैंने कहा, मैं समझता हूँ, स्विनीगर नहीं, वो श्री मैसन थे, पोर्ट एवेन्यू और स्प्रिंग के। और मैंने कहा, मैं आपका देनदार हूँ और मैं अब भी बहुत दुर्बल हूँ, परंतु मैं काम पर जाने की कोशिश में हूँ। अब यदि मैं आपका कर्जा ना चुका सका, मैं तभी मसीह हुआ था। मैंने कहा, श्री मैसन, मेरा पहला कर्तव्य परमेश्वर की ओर है कि मैं अपनी देह की चुकाऊं। मैं उसे पहले अपना दशमांश देना चाहता हूं। और मैंने कहा, तब मेरा दूसरा कर्तव्य है कि मैं अपने कर्जे चुकाऊं। मैंने कहा, मेरे पिता बीमार हैं और वो और हम परिवार में 10 बच्चे हैं। परंतु मैंने कहा, मैं दूंगा। यदि मैं आपको हर वेतन पर 25 सेंट से अधिक न चुका सका, अगर मैं नहीं चुका सका, तो मैं आकर इस बारे में आपको बता दूंगा। मैं बता दूंगा कि इस बार मैं 25 सेंट नहीं कर पाऊंगा। अब परमेश्वर की सहायता से मैंने हर पाई चुकता कर दी है, समझे। मेरा मतलब ये है, समझे, किसी को कुछ कहने का अवसर ना दें। और कोई मसीह इस कलीसिया से है जिसने एक बार अपनी कार में काम करवाया और आ गया। इस व्यक्ति ने कहा, मैं दे दूंगा, मुझे शनिवार को वेतन मिलता है, या इसी तरह से कुछ बताया, और उसने उसके पैसे कभी नहीं चुकाए और सप्ताह दर सप्ताह बीतते गए, उसने कर्ज नहीं चुकाया, न ही कुछ कहा। और उस व्यक्ति ने मेरे पास आकर कहा, देखिए इससे चर्च की छवि बिगड़ती है, इससे मसीह की छवि बिगड़ती है, आप नहीं चुका सकते हैं तो उसे जाकर कहिए मैं आपका देनदार हूँ और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा, मैं एक मसीही हूँ, परंतु मैं जरा अभी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं आपका ऋणी हूँ। और याद रखिए कि ये परमेश्वर की पुस्तक में भी है कि आप जानते हैं कि आप जो करते हैं, ताकि इससे मैं ये अपने लिए और हम सब मिलकर यत्न कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी चीज के पास पहुंच रहे हैं, हम किसी चीज के बहुत ही पास पहुंच रहे हैं जो कि होने वाली है। इसलिए हम इस बात के लिए तैयार होना चाहते हैं कि जबकि प्रभु का आगमन इतना निकट है, अब कि हम उस महान समय के लिए तैयार रहना चाहते हैं। अब हम तैयार होना चाहेंगे और एक छोटे विषय पर बोलूंगा जो कि आज प्रातः मैंने प्रभु की सहायता से चुना है, और हम जितना संक्षेप में हो सकेगा बोलेंगे क्योंकि लोग संचार व्यवस्था से सुन रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब पूरे प्रांत के बाहर, आप सबके यहाँ ऐसी सुहानी सुबह है जैसे कि यहाँ इंडियाना में है, जब से यहाँ वर्षा हुई है यहाँ पर अच्छा ठंडा बढ़िया मौसम है और ये बहुत अच्छा है। अब मैं इब्रानियों की पुस्तक में से पढ़ना चाहता हूँ पहला अध्याय और यहूदा की पुस्तक में से पहला अध्याय, इब्रानी 1:1-3 और यहूदा 1:1 विषय के लिए। आज प्रातः मेरा विषय पवित्र शास्त्र का अध्ययन है। आइए हम इब्रानी 1:1 पढ़ें। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है, वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने बैठ जा बैठा। कितना बढ़िया पाठ है। अब संत यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब आज की प्रातः मेरा विषय है मसीह अपने ही वचन में प्रकाशित हुआ। अब मैं इस परिणाम पर कैसे पहुंचा कि इस पर बात करूं, क्योंकि ये जानते हुए कि जो हम कहते हैं हमें इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं और किसी भी बात पर वैसे ही बोल दें, परंतु कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को स्थिर रहने में सहायता मिले, क्योंकि हम लोग भयंकर विश्वासघाती समय से निकल रहे हैं, हम वैसे ही उनमें से पार हो रहे हैं। और कभी कभी मुझे लगता है जैसे मेरे साथ है, आपके साथ भी है, और ये काफी कुछ ऐसा लगता है, ये बहुत डरावना है। अभी मैं एक युवा सेवक और उसकी पत्नी से कुछ क्षणों पहले कमरे में बात कर रहा था और दोनों ही परेशान थे, जैसा कि संसार और बाकी लोग इस धरती पर परेशान हैं। मैंने कहा, याद रखिए, शैतान परेशानी लेकर आपके पास आ रहा है की परवाह नहीं करते हुए कि आप कौन हैं। परमेश्वर उसके पास अधिकार है कि वो परेशान करे, और वो झटका उसने आपको मारा है कि अंधे हो जाओ या जोड़ों का दर्द लेकर कुर्सी पर बैठे रहो या परेशान रहो, समझे? और वो आपको कहीं भी परेशान कर सकता है, उसके पास इसकी खुली छूट है। अब यही जगह है कि आप हर समय अपने को आड़ में रखें और इस परेशान युग को देखें जिसमें हम रह रहे हैं। पिछले सप्ताह के टेपों पर मैं सोचता हूं आपको बहुत ही भयंकर बातें प्रकट होंगी जिनको कि हम इस सप्ताह बोलने जा रहे हैं, जब भी हमें अधिक बड़ा स्थान मिलेगा, उन अंतिम पीड़ाओं को जो धरती पर उंडेली जाएंगी, वो कटोरे, उन कटोरों का उंडेला जाना और सात गर्जन और वे भयंकर दृश्य जो पृथ्वी पर आने वाले हैं। आज मनुष्य और लोग, पूरा संसार दयनीय स्थिति में है। आप पिछले माह की रीडर डाइजेस्ट में पढ़िए, आप उसमें बिली ग्राम के ऊपर एक लेख देखेंगे, एक महान प्रचारक। वे इतना थक गए हैं कि वो और कोई सभा नहीं कर पाएंगे, और वो मायो अस्पताल में अपने को दिखाने गए के साथ शारीरिक कोई गड़बड़ नहीं है, केवल ये कि वे अधिक कार्य नहीं करते और उन्होंने उन्हें दौड़ने के लिए कहा शारीरिक व्यायाम करें, हर एक दिन एक मील दौड़ते हैं। और इस लेख में आगे लिखा है कि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि आज युवा लड़के और लड़कियां अपने 20 वर्ष की आयु में ही अधेड़ अवस्था में आ जाते हैं और अपनी 25 वर्ष की आयु में बहुत बार बहुत सी लड़कियां ऋतुस्राव बंद हो जाता है 25 वर्ष की आयु में। मुझे नहीं मालूम कि आपको मालूम है या नहीं, कुछ रातों पूर्व जब पवित्र आत्मा सभा में बोल रहा था तो एक छोटी लड़की वहां बैठी थी, उसके साथ यही समस्या थी। जब उसे बुलाया गया मैंने उसकी ओर दूसरी बार देखा, फिर देखा और मैंने देखा क्या मामला है। मैंने सोचा ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही युवा है, परंतु वो तो ऋतुस्राव बंद ही था, लगभग 20-23 वर्ष की आयु या ऐसी कुछ थी, समझे। मेरी माँ और आपकी माँ की ये अवस्था 45 से 50 के बीच में होती थी, मेरी पत्नी इस आयु अवस्था में 35 वर्ष में पहुँची, अब ये 20 वर्ष तक नीचे आ गई है, सारी मानव जाति विकृत हो गई है। यदि हमारी शारीरिक अवस्था इस प्रकार से विकृत होती रही है, इस मिलावटी भोजन तनावों ने इसे खराब कर दिया है, तो क्या हमारे मस्तिष्क की वे कोशिकाएं विकृत नहीं हो रही हैं? तब हम स्त्रियों को नग्न हालत में सड़कों पर देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि वे किस तरह से गलियों में 125 मील प्रति घंटा की गति से कार्य चलाती हैं, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से सारा राष्ट्र, सारा संसार, केवल यही राष्ट्र नहीं परंतु हर जगह लोग मानसिकता से गिर गए हैं। और यदि प्रभु ने चाहा तो जब हम उन 7 कटोरों को देखेंगे जो ये भयानक चीजें दर्शाते हैं, वो समय बाद मनुष्य इतना उन्मादी हो जाएगा, तब तक वो ये कल्पना करने लगेगा कि वो चींटी को पहाड़ के आकार में देखने लगेगा। टिड्डियाँ इस पृथ्वी पर आएंगी जिनके बाल लंबे लंबे होंगे, वो उन स्त्रियों को जिनके बाल कटे हुए हैं बहुत सताएंगी। स्त्रियों जैसे बाल नीचे लटकते हुए और लंबे लंबे दांत सिंह की तरह उनकी पूंछ में बिच्छू जैसे डंक होंगे और इस प्रकार वो पृथ्वी के मनुष्यों को सताएंगे। परंतु तब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी, आप अब भी सुधर जाइए। पीड़ाएं, पिछले रविवार जब हम इंद्रियों के चक्र में चल रहे थे कि कैसे 5 इंद्रियां बाहरी भाग में हैं, ये शरीर के लिए 5 इंद्रियों वाले द्वार हैं, शरीर में प्रवेश करने का यही मार्ग है, इन 5 इंद्रियों द्वारा देखना, चखना, स्पर्श, सूंघना और सुनना, शरीर से संबंध स्थापित करने का कोई और तरीका नहीं है। मनुष्य के अंदर एक व्यक्ति है जो आत्मा कहलाता है और उसकी भी 5 इंद्रियां होती हैं, विचार, सोचना और विचार और प्रेम और विवेक और इस तरह से और भी, ठीक है। अब आप अपने शरीर से नहीं सोच सकते, आप अपने मस्तिष्क में सोचते हैं। और यही बहुत से मसीह रुक जाते हैं और वे खेत के एक दाने की तरह होते हैं, खेत की एक झाड़ी की तरह होते हैं, वे भी पवित्र आत्मा से अभिषेक हो सकते हैं जैसा एक सच्चा विश्वासी अभिषेक होता है। परंतु इसके और अंदर एक और क्षेत्र होता है, तीसरा क्षेत्र या राज्य प्राण है, और ये परमेश्वर द्वारा पहले से चुना हुआ होता है। यही वो स्थान है जहाँ पर जीवन का सच्चा बीजांकुर होता है, ये यही होता है। अब याद रखिए, यदि मैं एक बिच्छू बीज लेकर और उसे बीच में से काट कर उसके बीच में गेहूं का दाना रख कर दबा दूं, तो उस बिच्छू बीज में से गेहूं ही निकल कर आएगा। इससे कुछ मतलब नहीं कि बाहर क्या है, भावनाएं क्या हैं। आज लोग पवित्र आत्मा के प्रमाणों के विषय में इत्यादि में भ्रमित हैं। शैतान किसी भी प्रकार के वरदान की नकल कर सकता है जो कि परमेश्वर की ओर से होते हैं, परंतु वो वचन को वचन वचन करके नहीं ला सकता। वो अदन वाटिका में यहीं पर असफल हो गया था, वो यहीं पर सदैव असफल होता है। उस टेप झूठे अभिषेक लोग या अभिषेक में यही है, वे आत्मा द्वारा अभिषेक हो सकते हैं, अन्य भाषाएं बोल सकते हैं, नाच सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, और फिर भी शैतान है। ये अंदर की ओर है। अब याद रखिए, यीशु ने कहा जितनों को पिता ने मुझे दिया है वे ही मेरे पास आएंगे, जब तक पहले पिता ही ना खींच ले कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हमने ये दिखाने के लिए इस पाठ से लिया है, आप अपने पूर्वज पिता में थे, इस तरह से और पीछे जाएं, शारीरिक रीति से मैं वो बोल रहा हूँ। अब आप आज भौतिक प्रकृति में हैं। कभी कभी परिवार में लाल बालों वाला बच्चा उत्पन्न होता है, से पिता को अचंभा होता है क्योंकि उसके परिवार में से कोई भी लाल सिर वाला व्यक्ति या माँ की तरफ से कोई नहीं है। परंतु यदि आप अपने वंशावली में पीछे जाएंगे तो पता लगेगा कि कोई व्यक्ति आपके पूर्वजों में लाल सिर वाला था। वो बीज आपके वंश में चलता आया और आप उसी वंश से हैं। जिस प्रकार इब्रानी 7वें अध्याय में मेलकीसेदक को अब्राहम ने दशमांश भेंट किया जब वो राजाओं को मारकर लौट आता था, और लेवी जो दशमांश लेता है उसने दशमांश चुकाया क्योंकि उस समय वो अपने पूर्वज इब्राहिम के अंदर था जब मेलकीसेदक उससे मिला। अब इसी तरह से ये है, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और यदि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ या परमेश्वर की बेटी हूँ तो हम परमेश्वर में आरंभ से थे। और जब यीशु पूर्ण वचन बना तो हम उसके अंदर अंकुर के रूप में थे। जब वो क्रूस पर चढ़ा तो हम उसकी देह में क्रूस पर चढ़े। जब वो मृतकों में से जी उठा तो हम उसके साथ जीवित हो गए। और जब से हमने इसे पहचान लिया है तो अब हम मसीह यीशु के साथ उन स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। समझे? क्योंकि यदि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हम परमेश्वर के गुण हैं। अब हमें अनंत जीवन मिला था, केवल परमेश्वर ही अनंत जीवन है। हम उसके साथ आरंभ से ही थे। और जब यीशु पूर्ण वचन बन गया तब हम उसका हिस्सा बन गए। आमीन। तो आप वहाँ थे जब वो वहाँ है, तब वहाँ ना कोई शैतान, ना कोई सामर्थ, ना कोई चीज हिला सकती है। वो हमारे प्राणों का लंगर है। आप यहाँ बाहर आत्मा में अभिषेक हो सकते हैं और बहुत से काम करने की इच्छा कर सकते हैं, परंतु जब उस वचन के सर्वोच्च गढ़ पर आता है तो आप वहाँ से कभी नहीं हट सकते। तब वो दृढ़ता और सच्चाई से वचन को पकड़ लेगा जितनी भी जोर से पकड़ सकता है। इसके बाद चाहे जो भी हो, आप चाहे जो भी करें, आप फिर भी नष्ट हैं। लौदीकियाई कलीसिया युग अंधा, नंगा, दयनीय है और उसे नहीं मालूम। देखिए, वो यथा स्थान पर नहीं है। ये वो अभिषिक्त है जो कि सच्ची आत्मा से अभिषिक्त है। देखिए, पवित्र आत्मा व्यक्ति की आत्मा पर आ सकता है, परंतु उसका प्राण उसका अंकुर है और वो अंकुर वचन है। समझे? और मैं चिंता नहीं करता कि आप कितना प्रचार कर सकते हैं, आप कितनी अच्छी तरह से कुछ कर सकते हैं और आप कितना प्रेम करते हैं। ये तो आत्मा का एक प्रवेश मार्ग है। आप अपने शरीर के द्वारा प्रेम नहीं कर सकते, आप अपनी आत्मा के द्वारा प्रेम करते हैं। ये तो एक इंद्रिय मार्ग है और आप प्रेम कर सकते हैं। आप परमेश्वर को भी प्रेम कर सकते हैं और उस पर भी आप सही नहीं हो सकते। आप प्रेत आत्माएं निकाल सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं और उन कामों को कर सकते हैं और फिर भी सही नहीं है। यीशु ने ऐसा ही कहा है, उस दिन बहुत सारे आएंगे। ये वचन ने निश्चित कर दिया है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हो गया और हमारे बीच डेरा किया। ध्यान दें, अब मैं बाइबल के इस विषय पर बोलने जा रहा हूँ कि मसीह अपने वचन में प्रकट हुआ। मैं अपने कमरे में इस सारांश पर पहुँचा। कोई प्रिय व्यक्ति हो सकता है आज प्रातः वो यहाँ बैठा हुआ हो। मुझे एक चित्र मिला जो मेरे अध्ययन कमरे में लटका हुआ है। वो चित्र हॉफमैन वाला यीशु का चित्र है जो पहाड़ी उपदेश के लेख में लिखा है। जब आप उस स्थान पर आते हैं जहाँ पर बाल होते हैं, वहाँ पर उसने पेन को अधिक दबाया है। इस तरह से उसने शब्दों को तैयार किया है कि उस पहाड़ी उपदेश के लेख में यीशु दिखाई पड़ता है। आप में से कोई, वो जो कोई भी था, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कोई और एक चित्र लाया और मेरे अध्ययन कक्ष में रख गया जिसमें एलिय्याह आग के रथ में ऊपर जा रहा है। मैं ऐसी चीजों की सराहना करता हूँ। बहुत बार मैं बड़ी भीड़ में इन बातों को बोलने का अवसर नहीं पाता हूँ, परंतु भाई बहनों, मैं ये देखता हूँ, मैं इसे जानता हूँ, परमेश्वर ये जानता है। मसीह अपने वचन में प्रकट हुआ। अब मैं इस विषय पर बोलने जा रहा हूँ किस प्रकार से पहाड़ी उपदेश में मसीह का चित्र उसमें से दिख पड़ता है। यहीं से मैंने इस विषय पर सोचा। अब मसीह और वचन एक ही हैं। देखा, वे कहते हैं बाइबल कैसी थी। लोग कहते हैं, अधिक समय नहीं बीता मैं एक व्यक्ति के साथ घुड़सवारी कर रहा था। उसने कहा, इस पर सोचिए, हम पृथ्वी पर हैं जैसे भी हैं और केवल जानते हैं या कह सकते हैं कि हमारा उद्धार यहूदियों की कल्पित कथा जो बाइबल कहलाती है उससे हो गया। मैंने कहा, श्रीमान, मैं नहीं जानता कि आप ये कैसे कह रहे हैं, परंतु मैं ये विश्वास नहीं करता कि ये यहूदियों की कल्पित कथा है। उसने कहा भाई जब आप प्रार्थना करते हो आप किससे प्रार्थना करते हो? मैंने वगैरह वगैरह मांगा और कुछ चीजें मांगी, मुझे नहीं मिली। मैंने कहा आपने गलत प्रार्थना की। हमें कभी परमेश्वर के विचार बदलने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमें अपने विचार बदलने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर के विचारों में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं होती, समझे? देखिए ये ठीक है। मैंने कहा आपने जो प्रार्थना करी वो नहीं। मैं एक युवा कैथोलिक लड़के को जानता हूँ, उसके पास प्रार्थना करने के लिए एक पुस्तक थी और वो अपनी माँ को जीवित रहने के लिए प्रार्थना कर रहा था और वो मर गई और उसने प्रार्थना पुस्तिका आग में फेंक दी। देखिए मैं प्रार्थना पुस्तक नहीं चाहता, परंतु देखिए जैसा भी हो आप गलत मनोस्थिति में हैं। आप परमेश्वर को बताने का यत्न कर रहे हैं कि वो कि क्या करना है। प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु मुझे बदल दे कि मैं आपके वचन अनुसार हो जाऊं। वो बदलाव नहीं कि मैं आपके विचार बदल दूं, आप मेरे विचार बदल दें, समझे? आप मेरे विचारों को अपनी इच्छा अनुसार बदल दें और आपकी इच्छा यहाँ इस पुस्तक में लिखी हुई है। और प्रभु मुझे आगे तब तक ना बढ़ने दे जब तक आप मेरे विचारों को अपने विचारों के अनुसार ना कर दें। और जब आप मेरे विचारों को अपने विचार अनुसार कर देंगे तब मैं आपके लिखे हुए हर वचन का विश्वास करूंगा। और आपने इसमें कहा है कि आप हर बात में मिलकर अपने प्रेम करने वालों के लिए भलाई उत्पन्न करते हैं, और प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। प्रभु ये सब मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है। इस सप्ताह मैं किसी गांव में अपने मित्र के यहाँ रुका हुआ था। कल जब हम मेज पर खा रहे थे तो मैंने उनमें से किसी से पूछा, हम जब एक साथ होते हैं तो थोड़ा सा बाइबल का अध्ययन करते हैं। हम प्रेम के विषय में बात कर रहे थे और वहाँ पर किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा, उसने कहा मैं विश्वास करता हूँ कि आप मसीह विरोधी हैं। मैंने कहा यदि ये बात मेरे प्रभु को प्रसन्न करती है तो मैं यही करना चाहता, मैं वही करना चाहता हूँ जैसा वो मुझे चाहता है। मैं उससे प्रेम करता हूँ और यदि वो मुझे नरक में डाल दे मैं तब भी उससे प्रेम करूँगा। यदि मैं इसी आत्मा के साथ जो मेरे पास है जाऊं, उसने मुझे अजीब प्रकार से देखा। मैंने उन चार पांच युवकों को उनकी युवा पत्नियों के साथ देखा, अच्छी स्त्रियां थीं। मैं जानता था कि ये युवक अपनी पत्नियों से कितना प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने उनसे कहा, मैंने कहा परखने का यह तरीका है, यदि आपके विवाह के पहले आपकी पत्नी, आप जाकर इस विवाहित जीवन के लिए कहें कि आपने स्वप्न में देखा है कि आप विवाहित हैं, जबकि सच में आपका विवाह ना हुआ हो, परंतु आपने स्वप्न में देखा कि आप विवाहित हैं और आपकी आँख खुल जाती है और आप जाकर अपनी लड़की मित्र को इस विषय में बताते हैं और कहें कि मैंने स्वप्न देखा है कि हमारा विवाह हो गया है और हमारे पास बालक हैं, हम लोग प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं और प्रभु के आने की बाट देख रहे हैं और आदि आदि। और तब ये लड़की आपसे कहे, देखो मैं तो आपसे अधिक दूसरे व्यक्ति से प्रेम करती हूँ, मैं दूसरे व्यक्ति के साथ अधिक प्रसन्न रह सकती हूँ। क्या आप हृदय की गहराई से प्रेम में ये कह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष तुम्हें मिले, मेरी प्रिय इसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली जाओ। अब आप में से हर एक पुरुष और स्त्री इस बात को जांचे, समझे? देखिए यदि आपका प्रेम सच्चा है तो आप यही करेंगे, क्योंकि आपकी रुचि उसकी भलाई में है। आप जानते हैं कि आप उसे पालेंगे और उसके साथ रहेंगे, वो आपकी पत्नी है, वो होगी, वो आपसे विवाह करेगी, परंतु वो प्रसन्न नहीं रहेगी, वो अधिक प्रसन्न होगी। और यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप उसे प्रसन्न देखना चाहेंगे। इसलिए परमेश्वर की जो भी इच्छा हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए, चाहे मुझे उससे प्रसन्नता हो या ना। मैं इस प्रकार जीवित रहना चाहता हूँ, मैं जो करूं उससे वो प्रसन्न हो। इसलिए अपनी मनसा और उद्देश्य को जांचिए, इसके द्वारा आप जान जाएंगे कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं। क्या हो यदि वो कहे तुम मेरी सेवा करो मैं तुम्हें बाहर निकालने वाला हूं? जो भी हो मैं आपसे प्रेम करता हूं। यदि गिरजे इन बातों को देख सकें और इस प्रकार का विश्वास कर सकें, तब कोई किसी से जबरदस्ती गेंद नहीं छीनेगा जबकि दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं। वो उसकी रक्षा करेगा, जबकि सही सत्य उद्देश्य और निशाना ये कहने का यत्न करना नहीं है, वाह मुझे भी ये मिल गया है, ये मैं हूँ। देखिए परमेश्वर ऐसे व्यक्ति का उपयोग नहीं करता। बहुत से नकल करने वाले आ जाते हैं और वो शैतान हैं और वो लोग इसको अनुभव से नहीं कर सकते। वो दूसरे की गेंद को छीनना चाहते हैं जो उसे दिया गया है। परमेश्वर को कोई सेवकाई किसी के द्वारा बढ़ाने दीजिए और देखिए कितने उसकी नकल करते हैं। अब परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम, इससे कोई मतलब नहीं कि प्रभु मैं कौन सा भाग हूँ। यदि मैं इस प्रेम के लिए एक ही शब्द कह सकूँ तो सहायता और रक्षा करें, मुझे यही करने दें। आपकी पत्नी के लिए भी यही बात होगी। यदि आप सच में उससे प्रेम करते हैं, देखिए ये फिलियो प्रेम नहीं है, ये अगपा प्रेम है, सच्चा प्रेम। वो किसी और के साथ प्रसन्न रह सकती है, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, सही में आप नहीं कर सकते। और प्रसंगवश लोग इस टेप को सुन रहे हो, बहुत से इस बारे में कहेंगे क्यों विवाह और तलाक में आपने ये कहा और वो कहा है। मैंने ये बहुत बार कहा है कि ये टेप केवल जाएंगे। भाइयों, मैं अपनी मंडली से बोल रहा हूँ, मैं इस बात का उत्तरदायी नहीं हूँ कि परमेश्वर आपके पास्टर को क्या देता है। मैं तो इस बात का उत्तरदायी हूँ कि मैं इन लोगों को किस प्रकार का भोजन देता हूँ। ये केवल इस गिरजे के लिए है, समझे। अब यदि लोग टेप सुनना चाहें तो ये उन पर निर्भर करता है, परंतु मैं तो वही बोल रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। ये उनके पाप थे जो मिटाए गए थे। किसी ने लिखकर मुझसे कहा, देखिए मैंने ये किया, मैंने वो किया, और आपने कहा हमारे पाप। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा देखिए ये केवल इन लोगों के लिए है जो यहाँ पर हैं, वो जो यहाँ गिरजे में हैं, मेरा अपना झुंड। अब यदि लोग भोजन को दूषित करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर की ओर से कोई प्रकाशन मिलता है और परमेश्वर जो आपसे करने को कहता है आप वही करते हैं, तो मैं भी वैसे ही करूँगा। परंतु ये संदेश इस कलीसिया के लिए है। ध्यान दें, हमें वापस आकर हमें कुछ और लेना है जिसको कि हमें ध्यान करना है। कहीं तो आधार हो, दूसरे शब्दों में ये अंतिम आधार, और हर किसी के पास कोई अंतिम या पूर्ण आधार होना चाहिए। कुछ वर्षों पहले मैंने इस पर प्रचार किया था, एक पूर्ण, एक स्थान जहां अंतिम वचन हो। जैसे कि गेंद के खेल में एम्पायर यदि वो कहता है कि लगी है, तो फिर वही है जो कहा गया। इसका कोई अर्थ नहीं कि आपने क्या देखा। एम्पायर ने कहा ये टकराई है, आपने कहा मैं ये नहीं टकराई थी, वो तो निकल गई, मैंने देखा। ये क्या है, इसका कोई मतलब नहीं। जब उसने कहा लग गई, तो बस हो गया, ये तय हो गया, वही अंतिम है। यातायात की बत्ती अंतिम है। यदि वो कहती है जाओ, आप कहें भाई मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे तो नहीं नहीं, वो बत्ती कहती है खड़े रहिए जबकि दूसरे जाते हैं, समझे। ये अंतिम है। आप हर काम जो करते हैं उसका कोई ना कोई अंतिम आधार है। जब आप पत्नी चुनते हैं तो उसका भी कोई अंतिम आधार ही होता है। वो एक स्त्री होती है जिसको आपको चुनना होता है। अब एक ऐसा अंतिम समय होता है जब आप अपनी कार खरीद करते हैं, आप अपना अंतिम फैसला किस प्रकार करते हैं, वो फोर्ड, शेवी, प्लेमाउथ, विदेशी कार होगी, जो भी हो आपको अंत पर आना ही होगा। इसी प्रकार मसीह जीवन भी है कि कोई तो एक अंतिम आधार लेना ही है। अब यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर कहे कि कोई कहता है कि भाई तुम्हें बपतिस्मा लेना चाहिए, और ये व्यक्ति कभी भी हो सकता है उसके गिरजे में बपतिस्मा ना पाया हो, उन्होंने केवल छींटे मारे हो। उदाहरण के तौर पे मेथोडिस्ट, मैं सोचता हूँ कि वे केवल निवेदन करने पर बपतिस्मा देते हैं, यदि आप कहें तो, मैं समझता हूँ। या हो सकता है कैथोलिक केवल छींटे मारते हैं। मान लीजिए यदि व्यक्ति डुबकी के बपतिस्मे के विषय में सुनता है और वह उसे नहीं समझता, उसका पालन पोषण कैथोलिक में हुआ है, इसलिए वो पादरी के पास जाकर कहता है फादर मैं समझता हूँ कि हमें डुबकी का बपतिस्मा लेना चाहिए, हमारा गिरजा इस विषय में क्या कहता है, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि हम पर छिड़काव ही होना चाहिए। अब यदि वो गिरजा उसका अंतिम आधार है तो ये तय हो गया, गिरजा ऐसे कहता है, बस यही ठीक है, सारे विवाद समाप्त हो गए। क्या हो यदि बैप्टिस्ट भाई हमें कहते सुने कि हम डुबाकर बपतिस्मा देते हैं, वो कहता है मैं भी इसका विश्वास करता हूँ और यीशु मसीह के नाम में, और गिरजे का ये सदस्य अपने पादरी के पास जाता है और कहता है पादरी साहब एक व्यक्ति ने मुझसे कहा है कि हमें डुबकी का बपतिस्मा लेना चाहिए, ये तो ठीक है, परंतु यीशु मसीह के नाम में। अच्छा, तो वो कहेगा आओ तो फिर हम देखें, क्योंकि यहाँ तो पुस्तक कहती है कि हमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा ही बपतिस्मा लेना चाहिए। यदि गिरजा उसका अंतिम आधार है तो ये तय हो गया, वो इस बात की चिंता नहीं करता कि कौन क्या कहता है, वही उसका अंतिम है। हर एक नामधारी गिरजा उसके अपने विश्वासियों के लिए अंतिम है, परंतु मेरे लिए और उसके लिए जिसके लिए मैं आशा करता हूँ कि मैं उसे मसीह के द्वारा मसीह के पास ले जा रहा हूँ, तो बाइबल हमारे लिए अंतिम है। कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हर एक मनुष्य का वचन झूठा और मेरा सच्चा ठहरे, और मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल परमेश्वर का अंतिम है। इससे कोई मतलब नहीं कि कोई क्या कहता है, यही अंतिम आधार है। बाइबल कोई विधियों की पुस्तक नहीं है, नहीं श्रीमान, ये विधियों की पुस्तक नहीं है, ना ही आचरण की धर्म संहिता है। बाइबल विधियों की पुस्तक नहीं है, इसमें बहुत सी विधियाँ हों और वगैरह वगैरह, नहीं श्रीमान, ये आचरण की पुस्तक नहीं है, नहीं श्रीमान, ऐसा नहीं है, ना ही ये किसी प्रकार की इतिहास की पुस्तक है, या ना ही ये धर्म ज्ञान की पुस्तक है, क्योंकि ये यीशु मसीह का प्रकाशन है। अब यदि आप पढ़ना पसंद करें, आप जिनके पास कागज हैं, इसे लिख लें, प्रकाशित वाक्य 1:1-3। जैसा कि बाइबल यीशु मसीह का प्रकाशन है, आइए हम इसे पढ़ें, जबकि हमारे पास समय है। ओ, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पास बहुत सारी टिप्पणियाँ लिखी हुई नहीं है जिनसे मुझे बोलना है। यदि प्रभु रुका रहता है, क्यों ना हम इसी में से कुछ प्राप्त करने का यत्न करें। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। इसलिए बाइबल यीशु मसीह का पूर्ण प्रकाशन है, और ये भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखी गई है। इब्रानी 1:1 में पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन अंत के दिनों में हमसे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बातें की। वो जितने भी भविष्यवक्ता थे उन सबको एक साथ मिला दिया। यीशु मलाकी था, यीशु यरमिया था, यशाया एलिया था, वे सब जितने थे सब उसी में थे, और आप जितने हैं और मैं सारा का सारा जो भी हूँ उसमें हैं। वचनों की गवाही वचन के लिए। इसलिए ये पुस्तक विधियों आचार संहिता की नहीं, न ही ये इतिहास की पुस्तक है या धर्म ज्ञान की पुस्तक है, ये ऐसी नहीं है, परंतु ये तो मसीह यीशु का प्रकाशन है। परमेश्वर स्वयं वचन से देह में प्रकाशित हुआ है। जो कुछ है वो यही है। बाइबल वचन है और परमेश्वर देह है। परमेश्वर वचन है, बल्कि और यीशु देह होने के नाते वो प्रकाशन है। किस तरह परमेश्वर यानी वचन देहधारी होकर प्रकट हुआ और हम पर भेद प्रकट हुआ, और इसी कारण वो परमेश्वर का पुत्र हुआ, वो परमेश्वर का भाग है। आप समझे? अब ऐसा नहीं है कि देह परमेश्वर का भाग है, वो तो केवल पुत्र है। जैसा कि इसे कैथोलिक लेते हैं एक पुत्र, अनंत पुत्र, और दूसरे गिरजे भी यही कहते हैं। इस शब्द का कोई तात्पर्य नहीं, समझे? ऐसा नहीं हो सकता कि अनंत हो और पुत्र भी हो, क्योंकि पुत्र एक चीज है जो कि कहीं से उत्पन्न हुई है, और शब्द अनंत से वो अनंत नहीं हो सकता। वो पुत्र हो सकता है, परंतु वो अनंत पुत्र नहीं हो सकता। नहीं श्रीमान, वो अनंत पुत्र नहीं हो सकता, परंतु अब वो पुत्र है। वो सारा वचन जो यरमिया में था, मूसा में था, और वो सारे वचन जैसा उसने कहा उन्होंने मेरे ही विषय में कहा। वो सारा वचन का सत्य दिव्य प्रकाशन एक ही मानव की देह में समा गया, और परमेश्वर ने उसको शरीर से ढांप दिया। यही कारण है कि वो पुत्र कहलाया। इसी कारण वो पिता का हवाला देता है। क्यों? ये तो बहुत साधारण है। यदि आप परमेश्वर को इसे अपनी बुद्धि में डालने दें, समझे? परमेश्वर मांस की देह में प्रकट हुआ। ध्यान दें, देह से प्रकट हुआ या वचन से देह में प्रकट हुआ? यूहन्ना 1:14 यही है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। अब इस बाइबल पर ध्यान दें। उनमें से कुछ ने कहा, ओ इसने ये किया, उसने वो किया, परंतु मैं आपको कुछ बताऊं। आइए हम जरा बाइबल के इतिहास में चलें कि ये कहां से आया। ये भिन्न भिन्न 40 लेखकों द्वारा लिखी गई है। 40 व्यक्तियों ने 1600 वर्षों से अधिक में अलग अलग इस बाइबल को लिखा, और अलग अलग समयों में संसार के इतिहास की विशिष्ट घटनाओं को लिखा। बहुत सी बार घटना के घटित होने के हजारों वर्ष पहले लिखा, और इन 66 किताबों में एक भी गलती नहीं है। ओ आश्चर्य, इसका लेखक कोई और नहीं, केवल परमेश्वर स्वयं ही है। वही इतना सही हो सकता है। एक भी शब्द दूसरे का विरोध नहीं करता। याद रखें, 1600 वर्षों की अवधि में बाइबल लिखी गई, मूसा से लेकर पतमोस टापू पर यूहन्ना की मृत्यु तक। 1600 वर्षों में 40 विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई। इनमें कोई एक दूसरे को नहीं जानता था और उनके पास ये वचन के रूप में कभी नहीं थी। इनमें से बहुत सो ने शब्द देखा तक नहीं, परंतु जब इन्होंने इसे लिखा और तब वे भविष्यवक्ता समझे गए, और जब उनकी भविष्यवाणियां सब एक साथ मिलाई गईं, तो वे सारी एक दूसरे में एक दूसरे के साथ एक ही सूत्र में बंधती चली गईं। पत्रस को देखिए, जिसने पेंतिकुस्त पे ये घोषणा की, तुम में से हर एक प्रायश्चित करे और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। पौलुस ने इस विषय में कभी नहीं सुना। वो तो अरब में 3 वर्षों के लिए पुराने नियम के अध्ययन के लिए चला गया कि देखे वो आग का खंभा कौन था जो उससे मार्ग में बोला, वो ये कहते हुए शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। वो कैसे गलत हो सकता है? उसने तो कभी भी कलीसिया से कोई भी सम्मति नहीं ली। और 14 वर्षों बाद जब वो पत्र से भेंट करता है, तो वे वचन दर वचन एक ही प्रचार कर रहे थे। ये है हमारी बाइबल। किसी भी मनुष्य का वचन असफल हो, इसमें कोई मनुष्य कुछ भी नहीं मिला सकता। आप बाइबल में कुछ भी ना बढ़ाएं, नहीं श्रीमान। ये पूर्ण प्रकाशन है। बस जिस प्रकार की 7 मोहरें, वे 7 मोहरें, कोई मुझसे कह रहा था, भाई ब्रणम प्रभु अब आपसे बातें करेगा, जब ये मोहरें खोली जा रही हैं, और वो हमें बताएगा कि हम परमेश्वर के और पास कैसे पहुंच सकते हैं और इसे कैसे करें। मैंने कहा, नहीं श्रीमान, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल पर 7 मोहरें दी गई हैं और इसमें 7 भेद छिपे हुए हैं। ये पहले ही लिखे जा चुके हैं, परंतु वे इसे समझ नहीं सके कि ये क्या है। देखिए वो कैसे इतने समय तक यीशु के नाम में बपतिस्मा देते रहे। देखिए, ये ऐसा तो नहीं था, ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन सब बातों को देखें कि ये कैसे थी, क्योंकि यहाँ तो बहुत से यीशु हैं। इस पृथ्वी पर मेरे बहुत से मित्र हैं, यीशु नाम के सेवक मित्र हैं। वो ऐसा नहीं है, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है, कोई लेखक नहीं, केवल परमेश्वर ही ठीक हो सकता है। आइए जरा हम देखें कि ये बाइबल कैसे लिखी गई थी। अब जरा उदाहरण के लिए देख लें कि हम जाकर चिकित्सा विज्ञान की 66 किताबों को लें, जो शरीर से संबंध रखती हैं, जो कि 40 विभिन्न चिकित्सा स्कूलों में लिखी गई हों, और 1600 वर्ष की अवधि में अलग अलग ले लें। कोई आश्चर्य नहीं कि उसमें किस प्रकार की निरंतरता निकल के आएगी। 200 वर्ष पहले जब हमारा राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को नमूनिया के लिए उन्होंने उसके पैर के नाखून खींच कर निकाल दिए और उसका खूब सारा लहू बहने दिया, क्या हो यदि हम अभी यही करें? आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़कर और कुछ चीजों को देखें जिसके प्रति हम लोग आजकल बहुत आकर्षित हैं, वो विज्ञान है। क्या हो यदि हम विज्ञान की 40 पुस्तकें 1600 वर्ष की अवधि से लें और देखें कि क्या निकलेगा? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 300 वर्ष पहले विज्ञान से सिद्ध किया कि यदि एक गेंद को भयंकर गति 30 मील प्रति घंटा से लुढ़काया जाए, तो वो वस्तु पृथ्वी से उठ जाएगी और बाहर की ओर निकल जाएगी। क्या आप सोचते हैं कि विज्ञान ने इस बात का उल्लेख फिर कभी किया? क्या अब इस बात से तालमेल बैठता है? जबकि आज वे गलियों की सड़कों पर 100 और 50 मील की गति से वाहन दौड़ाते हैं, परंतु उसने वैज्ञानिक विधि से गेंद को दाब द्वारा सिद्ध कर दिया कि यदि गेंद मैदान में 30 मील प्रति घंटा की गति से लुढ़काई जाए, तो वो पृथ्वी से ऊपर उठ जाएगी और अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी। नहीं, अब इसमें कोई तालमेल नहीं है, परंतु बाइबल का एक भी शब्द दूसरे का विरोध नहीं करता, न ही कोई भविष्यवक्ता दूसरे का विरोध करता है। वे सबके सब सिद्ध थे, और जब एक ने आकर भविष्यवाणी की और जब सच्चा दूसरा भविष्यवक्ता उठ खड़ा हुआ और उसने उसके वचनों को दोहराया, तो वो पूरा हो गया था। देखा, इसलिए बाइबल सच्चे विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन है। आप डॉक्टरों के कथनों को भी एक मत पर नहीं पाएंगे, उनसे भी आप कोई दृढ़ निश्चय नहीं निकाल पाएंगे। अब आप विज्ञान में भी निश्चित धारणा नहीं पाएंगे। आप जानते हैं, कुछ समय पहले उन्होंने हमें बताया कि जब बाइबल कहती है कि उसने देखा 4 स्वर्गदूत पृथ्वी के चारों कोनों पर खड़े हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पृथ्वी तो गोल थी। परंतु बाइबल ने कहा चार कोने। अभी आपने दो या तीन सप्ताह पहले अखबार में एक लेख था कि उन्हें मालूम चला है कि संसार चौखुंटा है। कितनों ने देखा है? क्यों? ठीक है, देखिए, मैंने उसकी कॉपियां करवा ली और इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई कुछ कहे, और किसी दिन उन्हें पता चलने वाला है कि वे अंतरिक्ष में 150 लाख वर्ष प्रकाश वर्ष नहीं देख रहे हैं, यानी वे एक ही चक्कर में घूम रहे हैं। ये ठीक बात है। इन्हीं दिनों में आपको मालूम होने वाला है कि जब आप स्वर्ग में जाते हैं तो आप कहीं बाहर नहीं उड़ जाते हैं, आप बस यहीं पर हैं, केवल दूसरे प्रकार के क्षेत्र में जो इससे अधिक गतिमान है वहाँ है। इस कमरे में बहुत से रंग आ रहे हैं, हर रंग, कमीज, पोशाक, जो कुछ भी आप पहने हुए हैं, अनंत है, वो सब रिकॉर्ड में है और दुनिया के चक्कर लगा रहा है। हर बार आप पलक झपकते हैं, ये रिकॉर्ड में है। देखिए, टेलीविजन इसे सिद्ध करता है। जब आप पैदा हुए, परमेश्वर ने रिकॉर्डर चला दिया। वो बनाता नहीं, वो रिकॉर्ड रखता है। आप जानते हैं कि थोड़े समय के लिए वो शोर नहीं करता, वो छोटा बालक जब तक वो संसार में नहीं आता, परंतु उसके बाद वो शोर आरंभ करता है। वो जो भी कहना आरंभ करता है और कार्य करता है, उसके लिए उसे उत्तर देना है। और जब ये जीवन समाप्त हो जाता है तो वो रिकॉर्डर या टेप लेकर परमेश्वर की बहुत बड़ी पुस्तकालय में रख दिया जाता है। अब आप न्याय के दिन कैसे करेंगे, वो फिर से आपके सामने बजाया जाएगा। आपका हिलना डुलना, हर विचार जो आपके मस्तिष्क से गुजरा, क्या आप देख सकते हैं? अब क्या आप देख सकते हैं कि परमेश्वर कहाँ है? उस रात जब मैं यहाँ खड़ा था और वहाँ मंच पर एक लंबा गंजे सर वाले व्यक्ति, जो देखने में सही में सुंदर तगड़ा व्यक्ति था, और वो बाहर गया, प्रभु ने उसके परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया और उसे क्या करना चाहिए, और वो बाहर जाकर बैठ गया। कुछ ही मिनटों के बाद एक और व्यक्ति मेरे सामने वैसा ही सा आया, परंतु उसका सिर झुका हुआ था। मैं नहीं समझ सका। मैंने उस व्यक्ति को फिर देखा, परंतु वो तो वो नहीं था, क्योंकि वो कोई और था। और इस व्यक्ति को मैंने ढूंढा और नहीं पाया। चारों ओर देखा, मेरे पीछे भी कोई नहीं था। मैंने कहा, वो व्यक्ति वहाँ पर्दे के पीछे बैठा है। और ये एक भाई था जो यहाँ गिरजे में आया करता था, लंबा गंजे सिर का सुंदर नवयुवक, वो इस तरह से बैठा था और उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वो प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो पेट के रोग से मरने पर था। उसे जूते का एक जोड़ा मिलने वाला था, उसकी पत्नी ने उसके लिए खरीदना चाहती थी। उसने कहा, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनने के लिए मैं जीवित नहीं रहूंगा। वो मर रहा था। और देखिए, वो उस आयाम में बैठा था। हालेलुया! परमेश्वर ने जरा हलचल की और वो कहा, वो वहाँ बैठा है, उसी अवस्था में जिसमें वो था। आप समझे मेरा क्या अर्थ है? अब ध्यान दें, वचन में कोई गलती नहीं है। यीशु परमेश्वर का वचन जो हृदय और विचारों को जान लेता है। परमेश्वर का वचन प्रबल और तेज है, इब्रानी 4:12। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है, वो विचारों और मस्तिष्क की भावनाओं को भी जांचता है। देखिए, मस्तिष्क में जाकर विचारों को खींच लाता है और समझाता है। समझ लेना क्या होता है, जान लेना, प्रकट करना, और यही है जो परमेश्वर का वचन करता है। आज हम कहते हैं कि कैथोलिक गिरजा परमेश्वर का वचन है, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल, टबरनेकल, ये गलत है। वचन प्रकाशन है, परमेश्वर वचन द्वारा प्रकट हुआ। नहीं, हम नहीं पा सकते। हम चिकित्सा विज्ञान और दूसरे वैज्ञानिकों में कोई भी निरंतरता नहीं पाते। यदि आइंस्टाइन के पास कोई आत्मिक प्रयोग होता, जैसा कि उसके पास भौतिक प्रयोग है, जैसा कि उसने प्रकाश के नियमों और दूसरा अध्ययन किया, तो वो हमें कुछ बता सकता। जब मैंने उसका आकाश में किसी महान अज्ञात केंद्र पर संदेश सुना, जिसको कभी नहीं छुआ गया, आप उससे पृथ्वी बना सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। उसकी सामर्थ्य असीमित होती है। देखा, उसने उसे देखा। आप हवा में इन छोटे छोटे पिंडों को देखते हैं, वे उसे उड़नतस्त्री कहते हैं या जो भी कहें। इसलिए लोगों, वो अच्छा हो कि हम उन्हें रहने दें। सुनते हैं कि ये लोग आकर गायब हो जाते हैं। आप ये कहते हैं कि आप नहीं सुनते कि वे वहाँ खड़े हैं और वे अब वहाँ नहीं है। इसी प्रकार से रैप्चर होने वाला है। इनमें से एक नीचे गिर जाएगा और ये स्वाभाविक देह स्वर्गीय देह को धारण कर लेगी और वे छिप जाएंगे। बाल या हड्डियाँ बची हुई ये क्षण भर में बदल जाएंगे और अंतरिक्ष से होते हुए और घर चले जाएंगे। और हम देखते हैं ये सब इस समय चल रहा है और पेंटागन इन प्रकाशों के कारण आश्चर्य में है और ये अद्भुत दिव्य प्रकाश और सारी चीजें आकाश में दिखाई दे रही हैं। आपने जेफरसन विले के इस सप्ताह के अखबार में कुछ रहस्यमय प्रकाश को देखा जो यहाँ पर था? वो लोग नहीं जानते कि वो क्या है, परंतु बाल को सुनो, किसी एक दिन ये आपको ले जाएगा, समझे? घबराओ नहीं। याद रखिए, यीशु ने कहा जैसा कि सादोम के दिनों में था। सादोम के थोड़ा सा पहले क्या हुआ? परमेश्वर कुछ स्वर्गदूतों के साथ नीचे उतर आया था। उन्होंने जांच पड़ताल का न्याय किया, कहा मैंने पाप से भरी चिल्लाहट सुनी है और ये इतनी तेज है कि ये पता लगाने के लिए ये सत्य है या नहीं मैं नीचे उतर आया हूँ। ये ठीक है, उस विशेष को देखिए जो इब्राहिम के पास रुक गया था। वो सारा के विचारों को जो उसके पीछे थी जान सकता था। आप जरा चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाएं और ध्यान दें कि क्या हो रहा है। यही बात आज है, ये जांच पड़ताल का न्याय है। क्यों? थोड़ी देर के बाद ये कलीसिया जब उस स्थान पर ठहर सकती है और हर बीज अपने स्थान पर आ गया है, वे चले जाएंगे, वे नहीं जान पाएंगे कि उन्हें क्या हुआ। एक और चला जाएगा, समझे? एक अपने पादरी के घर जा रहा होगा और एक यहाँ जा रहा होगा या यहाँ, और तब पहली चीज आप जानते हैं कि वे वहाँ नहीं है। और हनोक जो कि उदाहरण था, परमेश्वर ने उसे उठा लिया और वो नहीं मिला। जांच पड़ताल के लिए नीचे उतर आता है। इस निरंतरता में हनोक कैसे बदल गया, इज़राइल का एक उदाहरण है जो कि जहाज में पार हुए थे। परमेश्वर का वचन बहुत ही सिद्ध है। पुराने और नए नियम भी, जो कि एक ही चीज के दो भाग हैं, ये ठीक है। पुराने नियम इसका आधा भाग है, नया नियम इसका आधा भाग है। इन दोनों को एक साथ मिला दें तो आपको यीशु मसीह का पूर्ण प्रकाशन मिलेगा। यह भविष्यवक्ता बोल रहे हैं और यह वो व्यक्ति में है। देखा, दो आधे और एक संपूर्ण। अब हम अधिक नहीं लेंगे। अब याद रखिए, पुराना नियम नए नियम के बिना पूर्ण नहीं है और नया पुराने के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसी कारण मैंने कहा दो आधे एक पूरा बनता है, क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने कहा वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, वे उसके साथ ये करेंगे, वे उसके साथ ऐसा करेंगे, वो यहाँ है, वो यहाँ था, वो यहाँ था, उन्होंने उसके साथ ये किया, उन्होंने उसके साथ ये किया। मैंने अभी कुछ ही रातों पहले ये प्रचार किया है। अब वचन का अध्ययन करते हुए पौलुस तिमोथियुस को बताता है, इसका अध्ययन कर, परमेश्वर के वचन को सही से बांट जो कि सत्य है। ये तीन अनिवार्यता वचन में होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन प्रयोग में लाते हुए ये तीन आपको नहीं करने चाहिए। आइए इसका अगले 10 मिनट में अध्ययन करेंगे। तीन बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए, और बाहर जो लोग रास्ते में जहाँ कहीं भी हैं, इसको अपने मस्तिष्क में रख लीजिए। यदि आपके पास लिखने को पेंसिल नहीं है, आपको ये चीजें नहीं करनी है। हम आपको हमेशा बताते हैं कि आपको क्या करना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। अब आप वचन का गलत अर्थ नहीं बताना। आप कहें, भाई मैं विश्वास करता हूँ कि इसका अर्थ ये है, उसका अर्थ वही है जो वो कहता है, इसे किसी अनुवादक की कोई आवश्यकता नहीं। और वचन को गलत जगह पर नहीं लगाना चाहिए, और आपको वचन नहीं तोड़ना चाहिए। और यदि हम इसमें से कुछ भी करेंगे तो ये बाइबल में गड़बड़ी और असमंजस्य उत्पन्न हो जाएगा। ध्यान दें, यीशु का इस प्रकार गलत अर्थ लगाना कि वो एक मनुष्य परमेश्वर रूपी है, तो आप उसे तीन परमेश्वरों में एक परमेश्वर बना देंगे। यीशु मसीह को वचन होने पर भी आप उसे तीन में से एक परमेश्वर बना देंगे, या आप उसे परमेश्वर में दूसरा व्यक्ति बना देंगे, और ऐसा करके आप संपूर्ण वचन में गड़बड़ी कर देंगे। आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। यदि आप कोई एक बात कहते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, और आप दूसरी बार उसे कहीं और लागू करते हैं, या वो पहले से ही कहीं और किसी और समय पर लागू की जा चुकी हो, तो आप भी गलत व्याख्या कर रहे हैं। यदि बाइबल में कोई यीशु मसीह की गलत व्याख्या करे, कि वो स्वयं परमेश्वर नहीं है, उसे दूसरा व्यक्ति बनाए या वो तीन में से एक परमेश्वर है, तो ये पूरी बाइबल के हर वचन में गड़बड़ी उत्पन्न कर देगा। ये बाइबल की पहली आज्ञा को तोड़ देगा। तेरे पास मुझे छोड़ कोई और ईश्वर ना हो। ठीक है, ये सारी मसीही जाति को मूर्ति पूजकों का झुंड बना देगी, जो कि तीन विभिन्न ईश्वरों की उपासना करते हैं। तो देखिए आपके पास किस प्रकार की बाइबल होगी। ये हमें वही बना देगी जो यहूदी हमारे लिए कहते हैं। कहते हैं कि इनमें से कौन सा तुम्हारा परमेश्वर है। देखा, इसलिए देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको बाइबल की गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यीशु स्वयं बाइबल का व्याख्या है। जब वो उस युग में प्रकट हुआ तो वो उसके शरीर में प्रकट होने वाला भाग है, उसमें वो प्रकट हो रहा है। यदि वो हाथ का युग है तो उसे हाथ होना चाहिए, वो सिर का युग नहीं हो सकता। यदि वो शब्द का युग है फिर तब तो वो पैर युग नहीं हो सकता, समझे। और अब हम आंख के युग में हैं, और अब अगला वो स्वयं आने वाला है, देखना, भविष्य कथन संबंधी। देखिए, पीछे युग में हमने पहली कलीसिया युग के नींव से आरंभ किया, जब पूर्ण बीज नीचे जमीन में चला गया, तब ये पैरों लूथर से होता हुआ और वेस्ली से होता हुआ, फिर ये पेंटिकोस्टल में जुबानों होंठों में आया। देखा, अब ये आंखों में है, मलाकी चार के भविष्य कथन और वगैरह वगैरह। और अब कुछ और शेष नहीं बचा, केवल ये कि आप स्वयं आए और उसमें प्रवेश करें, क्योंकि यही अंतिम बात है। अगला बुद्धि है, और हमारी अपनी कोई बुद्धि नहीं है, वो उसकी है। हमारे पास अपनी कोई दृष्टि नहीं है। मनुष्य कैसे पहले से उन बातों को देख सकता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये परमेश्वर स्वयं है। देखिए, ये एक स्थान बन गया है और वो पूरी तरह से देह का निर्देशन करता है। तब मसीह की पूरी देह दुल्हन के रूप में प्रकट होती है, जो कि उसकी पसली में से निकाली गई थी, जिस प्रकार आरंभ में आदम ने किया था, बल्कि आरंभ में जैसे आदम के साथ हुआ था। जी हाँ, ईश्वर ये पूरी बाइबल को गड़बड़ी में डाल देगा। पहली आज्ञा टूटती है और ईश्वर में बदल जाता है, पागान के तीन ईश्वरों में से एक। ये तो केवल बाइबल की सारी तस्वीर ही नष्ट कर देगा। इसलिए आपको बाइबल की गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। अब ये वो पहली बात है, जबकि बाइबल के हर लेख के लिए यही लागू होता है, आपको उसे उसी के स्थान पर रहने देना चाहिए, और उसे उसके स्थान से हटाने पर आप उसे एक युग में परमेश्वर बना सकते हैं, और अगले युग में आप उसे इतिहास बना देंगे उसके स्थान से हटाकर। इसलिए वचन को गलत स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, वो सदा से परमेश्वर है। यदि आज आप उसे इतिहास का परमेश्वर बनाते हैं, तो वो पूर्व युग में क्या था और आज वो वैसा नहीं है, तो आप इब्रानियों 13:8 के साथ क्या करने जा रहे हैं। देखिए, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अब हम देखते हैं कि इससे क्या होता है और इससे क्या हुआ। ये तो पहले ही हो चुका है कि उसके वचन को गलत स्थान पर लगाने से वो अपने वचन का इनकार कर देता है। वचनों को अलग करने से आप उसकी देह को गलत बना सकते हैं, जहां सिर होना चाहिए वहां पैर लगाकर या ऐसे ही कुछ, इसी तरह से जैसे दूसरे शब्दों में आप यीशु से मूसा का संदेश सिखवा रहे हैं, और आप कर सकते हैं, या यहाँ तक मिल सकता है, वेस्ली लूथर के युग को प्रचार कर रहा है, आपको मिल सकता है, हमारे युग में पेंटिकोस्टल शिक्षा दे रहे हैं, पेंटिकोस्टल संदेश। आप देखते हैं कि कितनी गड़बड़ी इसमें हो जाएगी। पेंटिकोस्टल तो अपना चरित्र पहले ही दिखा चुके हैं, लूथर भी अपना चरित्र पहले दिखा चुके हैं, उपाधियों में जाकर युग के आरंभ होते ही वो वही मर गए और चले गए। ध्यान दें, यूं ही वे संगठित हुए वे मर गए। अब जरा देखें, यदि ये ठीक नहीं है तो इतिहास के पन्नों से होते हुए पीछे की ओर दृष्टि डालें। हर बार वे संगठित हुए और वहीं मृत हो गए, और फिर उनका इससे अधिक कुछ नहीं हुआ। ये संसार के ईश्वर के उपासक बन गए, और संरचना में और संगठन और उपाधियों में और भ्रम में चले गए। एक बेकार लोगों का झुंड वहाँ घुसकर अपनी आपत्तियाँ उठाता है, या अपने विचारों को उसमें घुसाते हैं, जैसा भी हो, और तब क्या होता है, वहाँ सब गड़बड़ हो जाता है। इस संसार के ईश्वर की ओर बढ़ते जाते हैं, जहां वो शैतान को स्वयं सिंहासन पर बिठाते हैं, और ये सोचते हैं कि उनके पास संसार का सबसे बड़ा नेता है जो कि शांति लाएगा। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, मैं फिर से कहूंगा कि यहां तक कि आज की सभ्यता भी बिल्कुल परमेश्वर के विरोध में है। सभ्यता परमेश्वर के विरोध में है, शिक्षा उससे लाखों मील दूर है। विज्ञान लाखों मील दूर है। विज्ञान और शिक्षा परमेश्वर को झूठा ठहराने का यत्न कर रहे हैं। देखा, धर्म विद्यालयों और विज्ञान प्रयोगशालाओं और वगैरह वगैरह के द्वारा वे अपना आंदोलन कर चुके। उस रात्रि उस दर्शन के विषय में क्या है, फिर जिसमें एक मनुष्य उन वैज्ञानिकों के विरोध में जो अपना मत दे रहे हैं चिल्लाया, वे जरा से घूमे और उसे देखा और चले गए। एक और घुड़दौड़ होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान दें, ये तीन अनिवार्यताएं होनी ही चाहिए। यीशु नूह का संदेश प्रचार करने नहीं आए, वो मूसा का संदेश प्रचार करने नहीं आए, या मूसा किसी और का प्रचार करने। देखिए, वचन को गलत स्थान पर मत रखिए। ये तो समय पर ही होना है। आप इसको लागू नहीं कर सकते। जब वो महान व्यक्ति जॉन वेस्ली आया था, वो महान व्यक्ति लूथर जब अपने संदेश न्यायोचित के साथ आया, और जब लूथर महान व्यक्ति था तो वो कलीसिया को अंधकार में से ले आया और विश्वास के द्वारा न्यायोचित प्रमाणित किया, और जब उसने ये किया तो उन्होंने उससे ऊपर उसे संगठित किया और वो मृत हो गए। जीवन गेहूं के पौधे में जैसे चलता है चला, वहाँ से निकलकर वैसली युग में आया। फुंदनी में लूथर में से बहुत सी पत्तियां निकली और वे उसी के साथ मृत हो गईं, जो कि ज्विंगली और कॉल्विन और दूसरे महान सुधारक निकले थे। तब वैसली आता है, एक और युग का फुंदनी में शुभारंभ हुआ। वैसली और एटरबरी और वे सब और जॉन और उसका भाई और वे परमेश्वर के महान व्यक्ति अपने संदेश के साथ सारे राष्ट्र छा गए। उन्होंने इसे संगठित किया और ये मर गए। तब वो आगे बढ़ी तो ऐसा लगा कि वो बीज उत्पन्न करने वाली थी, परंतु जब उसने देखा तो वो भूसी थी, पेंटेकोस्टल। परंतु इन सब के बाद में एक छोटी कली आती है, और आप अक्सर ध्यान देते हैं, मैं सोचता हूँ कि लूथर के समय जब वो तीन या चार वर्ष से अपने कार्य पर था, तभी लूथर गिरजा संगठित हो गया था। वैसली के अपने कार्य पर होते हुए थोड़े समय पश्चात वो संगठित गिरजा हो गया था। टूसान में हमारे पास एक कार्यक्रम था कि किस प्रकार से वैसली कलीसिया या मेथोडिस्ट गिरजा अस्तित्व में आया, और वे जब यहाँ अमेरिका में आए, बहुत से लोगों ने वापस आकर कहा कि इन्होंने इंग्लैंड का एक चरित्र तैयार किया है जिसको वे यहाँ लाए हैं, और इसको इसी तरह से दर्शाया गया। मैंने तभी देखा कि क्या हुआ, और वो वहाँ मर गई। फिर पेंटेकोस्टल आते हैं, वही जो पुराने समय में चिल्लाने वाले होते थे, जिन्हें भाषाएं बोलने का वरदान मिला और भाषाओं के बोलने के द्वारा आरंभ हुआ। इन्होंने इसका नाम रख दिया पवित्र आत्मा का प्रमाण। वे संगठित हुए, एक ने कहा वो ये करने जा रहा है और दूसरा कुछ, और उनके पास विवाद पर विवाद थे। ये क्या करेगा, उनमें से प्रत्येक अधूरा रह गया, जिस प्रकार की डंठल जिस प्रकार फुंदनी ने किया। उनमें एक बात, दो बात, तीन बात और चर्च ऑफ गॉड, और वो सब अधूरा 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 रह गया। परंतु प्रकृति के अनुसार, जो कि सिद्ध उदाहरण है, इसके बाहर आप कभी भी कुछ नहीं सिखा पाएंगे। एक परिवार जो केंटकी में मेरा मित्र है, उनके पास एक दिन छोटा बच्चा उत्पन्न हुआ। जब वे हमारा दोपहर का भोजन पका रहे थे तो माँ ऊपर थी और वो दूसरी बहनों की सहायता कर रही थी, जो हमारे झुंड के लिए जो शिकार पर था खाना पका रही थी। और बालक रोने लगा और मैं बातें कर रहा था। मैं सोचता हूँ कि माँ को थोड़ी परेशानी महसूस हुई, इसलिए वो भाग कर गई और बच्चे को लेकर दूध पिलाने लगी। मैंने कहा, आप जानते हैं, ये तो प्रकृति है, अब आप नहीं कर सकते। वे बालक के लिए कोई और अच्छा रास्ता ना पा सके कि वे उसे वहीं दें जिसके लिए वो चिल्ला रहा है। अब आप उसे नीति शास्त्र की पुस्तक देकर बैठा दें और कहें, मैं तुम्हें धर्म की शिक्षा देना चाहता हूँ पुत्र, अब तुम दूसरे बच्चों की तरह चारों ओर चीखना चिल्लाना मत, तुम भिन्न हो। अब जब तुम्हें भोजन की चाह हो, तब तुम इस छोटी घंटी को बजा देना। नहीं, इससे तो काम नहीं चलता, इससे काम नहीं चलता। इसलिए जब आप प्रकृति का अवलोकन करें, अब हम देखते हैं कि हर युग सीधे तौर पर इस तरह से बनाया गया कि हम अंतिम युग में हैं। भूसी अलग हो चुकी है, और हमें अब 15 या लगभग 20 वर्ष हो गए हैं कि ये संदेश राष्ट्र से राष्ट्र और इस प्रातः भी पूरे राष्ट्र में टेलीफोन द्वारा चल रहा है, और देखिए कोई संस्था नहीं है, ये संस्थागत नहीं हो सकता। इस तरह इससे पहले कभी नहीं हुआ या आने वाले समय में होगा, समझे। वो बात जो आज इस संदेश में महत्व रखती है, वो जो इसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, उन्हें इसे पुत्र की उपस्थिति में रखना चाहिए कि पकाया जाए। समझे, आप इस संदेश को ग्रहण कर सकते हैं और पुत्र को आप में से आपकी सारी हरियाली को पकने दें कि उसे परिपक्व मसीह बना दें। आप समझे मेरा क्या अर्थ है? परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने के लिए जल्दी आ रहा है और हमें इस तरह का मसीह होना चाहिए कि हम उसका स्वागत कर सकें। उस गेहूं को पकना ही है, ठीक है। ये तीन अनिवार्यताएं अवश्य होनी चाहिए। गलत व्याख्या न करें या गलत उपयोग न करें, गलत व्याख्या न करें या गलत स्थान पे न रखें। इसको वैसे ही रखें जिस तरह से परमेश्वर ने कहा था। संसार के लिए ये भेद की पुस्तक है। लोग ये सोचते हैं कि ये भेद भरी पुस्तक है। एक बार मैं विख्यात व्यक्ति से बात कर रहा था, यहाँ इसी नगर में, उसका मसीह समाज में बहुत सम्मान है, और उसने कहा एक रात मैंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने का प्रयत्न किया। कहने लगा यहोन्ना ने बहुत सारी काली मिर्च खा ली होगी और उसे ये भयंकर स्वप्न दिखे। देखिए, भेदों की पुस्तक। परंतु जबकि सच्चे विश्वासी के लिए ये परमेश्वर का प्रकाशन है जो कि इस युग में जिसमें हम रह रहे हैं प्रकाशित किया जा रहा है। उसने कहा मेरे वचन आत्मा और जीवन है। यीशु ने ये कहा है। फिर वचन एक बीज है जिसे बोने वाला बोता है। हम जानते हैं कि ये सत्य है। ये परमेश्वर वचन के रूप में है और इसकी व्याख्या वह स्वयं करता है। मनुष्य के मस्तिष्क में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि परमेश्वर के मस्तिष्क की व्याख्या करे। किस प्रकार से एक छोटा सीमित मस्तिष्क असीमित मस्तिष्क की व्याख्या करे जबकि हम एक दूसरे के विचारों की व्याख्या नहीं कर सकते। और आप ध्यान दें कि वही है जो इसकी व्याख्या कर सकता है और वो जिसको चाहे उसकी व्याख्या बता सकता है। ये ऐसा नहीं कहा गया कि पुराने मरणहारों ने जो पृथ्वी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले गए बीते युगों और भिन्न भिन्न तरीकों से। परमेश्वर ने बीते हुए समयों और भांति भांति से अपने भविष्यवक्ताओं पर अपने को प्रकट किया। देखा, और ध्यान दें वो किस पर ये प्रकट करेगा। और उसने इसको इस प्रकार से बनाया है कि वो अपने आप को वचन में तेज तरार धर्म विद्वानों से छिपा ले जाए। ओ आश्चर्य, वो अपने को छिपा सकता है। वही वचन में होता है और आप उसे सारा दिन देखते रहते हैं और कभी नहीं देख पाते हैं। सारे जीवन भर देखते रहते हैं और उसे कभी नहीं देख पाते। वो वहीं पर होते हुए अपने आप को छिपा सकता है। अब कृपया हर स्थान पर इसे अपने में ग्रहण होने दीजिए कि परमेश्वर वचन में है और वो अपने आप को वचन में छिपा सकता है। ऐसा कोई धर्म विद्वान या विद्यालय संसार में नहीं है कि उसे ढूंढ सके, और जबकि वो वहीं होता है। आप कहते हैं क्या ये बात ठीक है भाई ब्रैनम? फरीसी और सदूकियों के विषय में क्या था? प्रत्येक युग में ये कैसे था? जी हाँ, उसने यही किया। उसने ऐसा हर युग में किया। अब हम ये जांच सकते हैं। आइए नूह के दिनों के विषय में विचार करें। तीक्ष्ण बुद्धि और समझदारी का युग, किस प्रकार से उसने अपने को अपनी प्रतिज्ञा किए हुए वचन में छिपा लिया। मूसा के दिनों में वो कैसे छिप गया? एलिया के दिनों में उसने कैसे अपने आप को छिपा लिया? यीशु के दिनों में उसने कैसे अपने आप को छिपा लिया? वो संसार में था और संसार उसके द्वारा बनाया गया और संसार ने उसे न जाना। वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। देखा, वो अपने आप को इस संसार के बुद्धिमानों और समझदारों से छिपा लेता है। आप कहते हैं भाई ये डॉक्टर होली फादर फला फला है, मैं इसकी चिंता नहीं करता कि वो कौन है। परमेश्वर अपने आप को उनसे छिपा लेता है और वो अपने को बालकों पर प्रकट करेगा। ऐसे ही सीखेंगे। देखिए, परमेश्वर के बालक पहले ही से ठहराए गए। सोचिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वचनों में है और इस युग के बुद्धिमानों और समझदारों को अंधा कर देता है और वे उसे नहीं देख सकते। वे सोचते हैं ये तो धार्मिक कट्टरवादियों का झुंड है। तो देखिए कि वो पेंटेकोस्टल बैप्टिस्टों, मेथोडिस्टों, प्रेस्बिटेरियनों से कैसे छिपा खड़ा है। अपने आप को खुल्लम खुल्ला प्रकट करता है और हर प्रकार की बातें दिखा रहा है, यहाँ तक कि अखबारों में भी, और तरह तरह से प्रकट है, तब भी वे उसे नहीं देख सकते। ओ हमारा परमेश्वर कितना महान है, जिस पर भी वो चाहता है अपने को प्रकट कर रहा है। ओ आप कहते हैं भाई जोन्स या अमुक भाई वो महान व्यक्ति है, वो ये देख लेगा। ओ नहीं, वो तो जिसको चाहेगा उस पर प्रकट होगा। कहने को मेरी पत्नी ये नहीं देखती और वो एक मसीह स्त्री है। वो अपने को उसी पर प्रकट करता है जिस पर वो चाहता है। अरे मेरा पादरी महान व्यक्ति है, ये ठीक है, परंतु वो अपने को उसी पर प्रकट करता है जिसे वो चाहता है। क्या प्रकाशित हुआ है, इससे जांचिए कि क्या हो रहा है, तब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे या समझ सकते हैं। अब हम इस पर ध्यान देते हैं, इससे ये पुस्तक परमेश्वर की हो जाती है, ना कि मनुष्य की पुस्तक। यदि ये मनुष्य की थी तो आइए हम देखें तो ये किस तरह प्रकट होती। देखिए, इसने उनके पाप कैसे प्रकट किए जिन्होंने से लिखा। उन व्यक्तियों पर ध्यान दें जो कि इसके दिनों में जीवित थे। उदाहरण के लिए इब्राहिम, विश्वासियों का पिता। देखिए ये कैसे हो सकता है। क्या आप सोचते हैं कि इब्राहिम ने स्वयं ये पुस्तक अपने ऊपर लिखी, अपने ही डरपोक पने पर? आप कैसे सोचते हैं कि उसने लिखा होगा कि उसने राजा से उस प्रातः झूठ बोला और कहा कि वो उसकी बहन है जबकि वो उसकी पत्नी थी? क्या वो अपने उस डरपोक वाले कार्य को जो उसने किया लिखेगा? बिल्कुल वो ऐसा नहीं करता। याकूब का अपनी धोखाधड़ी के विषय में क्या है? एक छोटा सा धोखेबाज जो याकूब था, क्या एक इब्रानी पुरुष अपने इब्रानी भाइयों के लिए लिख रहा है कि उसमें से होकर पूरा इसराइल बुलाया गया? क्या वो ये लिखने का साहस करेगा? उसी राष्ट्र के पिता ने धोखा दिया। याकूब से पूर्वज आए और पूर्वजों से गोत्र आए, और इन सब के नींव के पत्थर को बाइबल ने धोखेबाज दर्शाया। आप सोचते हैं कि मनुष्य ऐसा लिख सकता है? नहीं श्रीमान। उस व्यक्ति के लेख के विषय में जिसने महान राजा जैसे उनके पास कभी नहीं हुआ, एक ताज वाला राजा दाऊद, उसके व्यभिचार के विषय में लिखा। क्या वो यहूदी अपने महान राजा के लिए कि वो व्यभिचारी दशा में है लिख सकते थे? ओ, हमारे पास ऐसा इतिहास है कि जॉर्ज वाशिंगटन ने कभी झूठ नहीं बोला और इस तरह की चीजें हैं, हम उसे इतिहास कहते हैं। परंतु यहाँ एक व्यक्ति है, वो बाइबल, जो कि दाऊद को व्यभिचारी कहती है, और वो था इसराइल का राजा, एक व्यभिचारी जिसका एक पुत्र होना था, यीशु, दाऊद का पुत्र होना है, बिल्कुल वही चोटी का पत्थर। और शरीर के अनुसार उसका पिता व्यभिचारी था। यहूदी ऐसी पुस्तक कभी नहीं लिखते। क्या मनुष्य अपने विषय में ऐसा लिखेगा? बिल्कुल नहीं। उस इसराइल राष्ट्र का गर्व क्या होगा? आप जानते हैं कि उन्हें कितना गर्व था। इसराइल का गर्वित राष्ट्र, उन्होंने स्वयं अपनी मूर्ति पूजा के विषय में लिखा, अपने ही परमेश्वर के विरोध के विषय में लिखा, उन गंदी और मैली बातों के विरोध में जो उन्होंने की थी उस पुस्तक में लिखा। वे तो उसे अवश्य छिपा लेते, वे तो अच्छी ही बातें लिखते। परंतु ये बाइबल बताती है क्या सही और क्या गलत है। ये तो कोई भी जान सकता है कि यहूदी ऐसी पुस्तक कभी नहीं लिखते, अपनी अशुद्धता और मूर्ति पूजा और असफलता और हर बात जो उन पर बीती, वे कभी नहीं लिखते। ओ नहीं, तो फिर किसने ये लिखा? इब्रानी 1:1 में बाइबल कहती है, पूर्व युग में परमेश्वर ने भांति भांति से हमारे पूर्वजों से भविष्यद्वक्ताओं द्वारा बातें की। तो फिर ये भविष्यद्वक्ता नहीं थे, ये मरणहार नहीं था, परमेश्वर। थोड़े थोड़े समय में ये भविष्यद्वक्ता नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने थोड़े थोड़े समय में और भांति भांति करके हमारे पूर्वजों से भविष्यद्वक्ताओं द्वारा बात की। मैंने यहाँ पर वचन लिख रखा है, मुझे मालूम नहीं कि ये क्या है, मैं आपको उसका हवाला नहीं दे सकता। अक्सर जब मैं इन बातों का उल्लेख करता हूँ तो मैं वचन में देखता हूँ। एक मिनट, मैं जरा इसे ढूंढ लूँ, हो सके तो आप मुझे क्षमा करें। ये दूसरा तीमोथियस 3:16 है। मैंने सोचा कि मैं याद कर लूंगा, परंतु मुझे खेद है कि मैं एक मिनट रुक कर ढूंढ कर आपको बताता हूँ कि वो क्या है। परमेश्वर ने बीते युग में थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से पूर्वजों से भविष्यद्वक्ताओं द्वारा बातें की। अब दूसरा तीमोथियस 3:16, आइए देखें ये क्या कहता है। हर एक पवित्र शास्त्र, जी हाँ, परमेश्वर की क्या प्रेरणा से रचा गया, भविष्यद्वक्ताओं की नहीं, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ठीक है, तो फिर सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। यीशु ने यहाँ पृथ्वी पर कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु उसके वचन कभी नहीं टलेंगे। उसने कहा सारा पवित्र शास्त्र पूरा होना ही है। इसलिए ये पुस्तक कोई मनुष्य के द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है, ये पुस्तकें परमेश्वर के लेख हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर अपनी पहले से ठहराई हुई मनसा के अनुसार अपनी कलीसिया, अपना स्थान, अपना भविष्यद्वक्ता और जो कुछ भी है वो चुनता है। पहले से जाने हुए ज्ञान के अनुसार वह अपना भविष्यद्वक्ता ठहराता है, और जब वो युग आता है तो उसका भविष्यद्वक्ता उसी समय पर प्रकट होता है और उसे प्रेरित करता है कि उसके द्वारा बाइबल लिखे। अब परमेश्वर ने केवल अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बाइबल लिखी, क्योंकि उसके काम करने की यही विधि है। इसलिए देखिए, ये वो वचन नहीं है। इस प्रकार से देखिए, ये परमेश्वर का वचन है और न कि मनुष्य का वचन। परमेश्वर एक व्यक्ति है। परमेश्वर बोल सकता है। परमेश्वर बात कर सकता है। परमेश्वर लिख सकता है। उसने इसको उस तरह से नहीं किया। उसने अपने कार्य करने का वही तरीका चुना। उसने इसे इस प्रकार नहीं किया, परंतु उसने उसे करने के लिए दूसरा रास्ता चुना। अब आप कहेंगे, परमेश्वर ने अपनी उंगली के द्वारा लिखा, उसने अपनी शानदार उंगली से 10 आज्ञाएं लिखी, इसलिए परमेश्वर स्वयं भी लिख सकता है यदि वो चाहे तो। देखा, परंतु उसने भविष्यद्वक्ता द्वारा लिखने को चुना। देखो, क्योंकि वो उसका गुण था, उसका वचन जो उसने उनके द्वारा प्रकट किया, उसको एक भाग बना दिया, या वो उसका भाग है, समझे। वो अपनी उंगली से लिख सकता था। उसने एक बार बाबुल की दीवार पर भी अपनी उंगली से लिखा, तू तराजू में तोला गया और तौल में हल्का निकला। उसने अपनी उंगली से लिखा। परमेश्वर बात कर सकता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर बात कर सकता है? उसने मूसा से पहाड़ पर जलती हुई झाड़ी में बात की। विश्वास करते हैं? जी हाँ। उसने यहुन्ना से पंडुकी के रूप में बात की। आप विश्वास करते हैं? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं वास करने से प्रसन्न हूँ। उसने उससे बात की। उसने रूपांतर वाले पहाड़ पर पतरस, याकूब और यहुन्ना के सामने यीशु से बातें की। बात कर सकता है, वो गूंगा नहीं है। परमेश्वर बात कर सकता है। इसलिए वो रूपांतर वाले पहाड़ पर यीशु से बोला, और वो यीशु से बड़ी भीड़ के सामने बोला। जब लोगों ने कहा बादल गर जा, परंतु वो परमेश्वर ही था जो यीशु से बोल रहा था। और लगभग सभी में, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में यीशु बोल रहा है। वो परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर बात कर सकता है। एक दिन उसने अपनी ही उंगली से रेत पर लिखा। उसने बातें की, उसने प्रचार किया, उसने अपने ही होठों से भविष्यवाणी की। ये परमेश्वर ने किया जब वो शरीर में आकर हमारे बीच में रहा। परमेश्वर शरीर में प्रकट। यदि वो लिख बोल सकता है, तो क्या वो दूसरों को ये भी नहीं बता सकता कि क्या करना है? बिल्कुल वो कर सकता है। वो उनसे मनुष्य की आवाज में बोल सकता है। वो लिख कर और उन्हें दिखा सकता है कि क्या करना है। उसने यही किया। इसलिए परमेश्वर ने बीते समयों में थोड़ा थोड़ा और भांति भांति तरीके से पूर्वजों से भविष्यद्वक्ताओं द्वारा बातें की, और उसने अपने लेखों के लिए कहा है कि एक भी शब्द या छोटा सा निशान भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। और तब ये प्रकट हो गया। तब ये तो घटित होगा ही, क्योंकि ये प्रकट हो चुका है। ये तो हो ही नहीं सकता। परंतु जब वो वचन स्वयं ही देहधारी हो गया। जॉट का अर्थ है छोटा शब्द, टाइटल का अर्थ है छोटा निशान। यहाँ तक कि एक निशान, एक भाव, कुछ भी परमेश्वर के वचन में असफल नहीं हो सकता। ये असफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य के देह रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि ये परमेश्वर स्वयं अक्षरों के रूप में है, भविष्यद्वक्ता के रूप में देह में प्रकट हुआ। अब यही कारण है कि यीशु ने कह सका, क्या वो जो तुमसे बोले तुमने उन्हें ईश्वर कहा? कौन तुमसे परमेश्वर के वचन द्वारा बोला? और वे ईश्वर थे। वे भविष्यद्वक्ता जब वे परमेश्वर के आत्मा द्वारा अभिषिक्त हुए थे, और वे बिल्कुल सही परमेश्वर का वचन लाए, तब वे ईश्वर थे। वो परमेश्वर का वचन था जो उनके द्वारा बोला जा रहा था। उन्होंने वही व्याख्या की जो लेखक ने उन्हें व्याख्या करने की अनुमति दी। यदि आप देखना चाहते हैं, तो दूसरा पत्रस 1:20-21 ठीक है, क्योंकि ये जहाँ परमेश्वर है, उसका कोई निजी अनुवाद नहीं है। वो अपना अनुवाद स्वयं करता है। परमेश्वर बोलता है और उसका अर्थ बताता है, तब वो जिस पर चाहे उस पर प्रकट करता है, और सब लोगों से छिपा लेता है। जब तक वही ना चाहे, वो प्रकट नहीं करता, और वो नहीं करता। वो अपनी सारी बात वचन में प्रकट कर चुका, इसलिए सारी बातें पहले ही जता दी गई हैं। वो तो वहाँ बैठा हुआ देख रहा है कि ये घटित हो रहा है, समझे। वो तो केवल देह को बनते और उसको उसके दुल्हन रूप में फिर से बदलते देख रहा है, ठीक है। विश्वासी इसका विश्वास करता है, जैसे कि इब्राहिम ने यद्यपि उन वस्तुओं को ना होने पर भी उनकी आशा की। ये भी कि वचन हृदय के गुप्त विचारों को भी जांचता है, इब्रानी 4:12। ये हृदय की गुप्त बातों को जांचता है। भविष्यद्वक्ता सदैव इसको नहीं समझ सके कि वे क्या लिख रहे थे, या वे क्या कह रहे थे, या उन्होंने वही बात नहीं कही जिसको वे समझ सकते थे। परंतु पवित्र शास्त्र ये कहता है, वे पवित्र आत्मा के द्वारा ही चलते थे। चलना, जब पवित्र आत्मा आपको चलाता है आप चलते हैं। मनुष्य परमेश्वर ने बीते हुए समय में बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की जो कि पवित्र आत्मा द्वारा उभारे जाते थे। इसी कारण प्रत्येक युग में आत्मिक लोग भविष्यद्वक्ताओं से समय और क्या होने को है इस विषय में परामर्श लिया करते थे। लेखक भविष्यद्वक्ताओं के लिए यह अवश्य था कि वे निरंतर लेखक की संगति में रहें, समझे, उसे निरंतर लेखक की उपस्थिति ही में रहना है ये जानने के लिए पुस्तक में अब क्या होने जा रहा है, समझे। लेखक भविष्यद्वक्ता की कलम हर समय तैयार रहती थी, वो लेखक की संगति में बना रहता था जो कि परमेश्वर था, वो जो भी कहे उसे तुरंत लिख देता, आप समझे, इस बात को दिखाता था कि उसका जीवन कैसा होना चाहिए। उसका जीवन उसके सब भाइयों से अलग होता था। अब इसलिए भविष्यद्वक्ता का ध्यान लगातार परमेश्वर ने क्या कहा है इस पर लगा रहता था, न कि इस पर कि मनुष्य के क्या विचार है, न कि उस कल का क्या विचार है, न कि गिरजे का क्या विचार है, राज्य का क्या विचार है, परंतु परमेश्वर का क्या विचार है। वो केवल परमेश्वर के विचारों को वचन में प्रकट करता था, क्योंकि वचन ही विचार है और जब वो प्रकट किया जाता है, अब आप समझे, वचन ही विचार का प्रकटीकरण है। इसलिए भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के विचारों की प्रतीक्षा करता था और जब परमेश्वर उस पर अपने विचार प्रकट करता था तो वो इस वचन में प्रकट करता था। यहोवा इस प्रकार कहता है, देखिए ऐसे नहीं कि मैं भविष्यद्वक्ता इस प्रकार कहता हूँ, यहोवा यूँ कहता है, समझे, ठीक है। इसी कारण उन्होंने राज्यों और कलीसियाई कालों को ललकारा जो कि उनके दिनों में ऐसा करने से मृत्यु दंड मिलता था। कौन राजा के सम्मुख जाकर और उससे कहे यहोवा यूँ कहता है कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है, वो तेरा सिर काट देगा, कलीसिया तुझे ऐसा करने के लिए अभी मार देगी। परंतु ये भविष्यद्वक्ता निडर थे, क्यों, वे पवित्र आत्मा द्वारा उभारे जाते थे। देखिए इसलिए वो लोग निडर हो जाया करते थे और उन्होंने परमेश्वर का अचूक वचन लिखा। बहुत सारे ऐसे हुए जो कि भविष्यद्वक्ताओं की नकल उतारते थे, जैसे कि याजक या और दूसरे। उन्होंने क्या किया, बस यही कि सब कुछ गड़बड़ कर दिया। वे उनकी तरह नहीं कर सके क्योंकि परमेश्वर उस युग के लिए मनुष्य को चुन चुका होता है और संदेश को चुना हुआ होता है और यहाँ तक कि उसका स्वभाव भी कि उस युग में क्या होगा और वो क्या कहेगा, वो उस व्यक्ति विशेष के स्वभाव के साथ कैसा करता है, वो दूसरों की आंखों को अंधा कर देता है। वे वचन जो कि वो व्यक्ति कहेगा वो इस तरह से करता है जो कि दूसरों को अंधा कर देता है और कुछ की आंखें खोल देता है। देखा, वो उस व्यक्ति को ऐसी वेशभूषा पहनाता है जो वो था, उसका स्वभाव, उसकी इच्छा, हर चीज जिस तरह की होनी चाहिए बिल्कुल सही उन लोगों के लिए तैयार करता है जिनको वो उस विशेष युग के लिए बुलाता है, जबकि वहाँ दूसरे खड़े हुए उसकी ओर देखकर कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं देख सकता। वे अंधे कर दिए गए थे और ऐसी ही वेशभूषा में यीशु आया। अविनाशी परमेश्वर ने मनुष्य की देह पहन ली और क्योंकि वो चरनी में पैदा हुआ, घुड़साल में जो कि गोबर भरी थी, उसके पास सिर रखने को स्थान नहीं था। उसके जन्म के साथ ये बात लगी हुई थी कि ये अवैध संतान है, समझे, और ये सब बातें कि कैसे वो बड़े का पुत्र जिसने कभी शिक्षा ना पाई कैसे हो सकता है, जो कि वो था। इस संसार की थोड़ी या अधिक संसारिक बुद्धि से उसे कुछ लेना देना नहीं था। इस संसार की कोई भी सभ्यता, शिक्षा या कुछ भी, उसका इनसे कुछ भी लेना देना नहीं था। क्यों? वो परमेश्वर था, वो उससे विरोध करेगी। यदि वो कहीं धार्मिक शिक्षा विद्यालय में जाने का प्रयत्न करता और उन बातों को सिखाता जो संसार की कलीसियाएं कर रही थी, क्यों, तो क्या होता, वो तो किसी भी कीमत पर उसके साथ उसकी समझ से मेल नहीं खा सकती थी क्योंकि वो परमेश्वर था। इसलिए शिक्षा विद्यालय, धार्मिक शिक्षा और हर चीज ये परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल विपरीत है। सारी शिक्षा पद्धति परमेश्वर की विपरीत है। हर शिक्षा परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए हर समय शिक्षित करती रहती है। जब मैं सुनता हूँ कि अमुक व्यक्ति PhD LLQ है तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ये परमेश्वर से बहुत दूर हो गया है, समझे, उसने अपने को शिक्षित करके परमेश्वर से उतना ही दूर कर लिया जहाँ के लिए उसे विशेषता कार्य के लिए बुलाया गया था। ये ठीक बात है। अब ध्यान दें कि वे किस प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाते थे। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। पौलुस को देखिए, मैं नहीं समझता कि उन दिनों में पौलुस से अधिक कोई तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति होगा जो कि तारसुस का शाऊल था। उसने गमलीएल के अधीन शिक्षा पाई थी जो उस समय का एक महान विद्वान, पक्का इजरायली, नामधारी गिरजे का फरीसी, और उसकी देखरेख में पौलुस की बढ़ोतरी हुई और वो सारे यहूदी धर्म को जानता था। परंतु जब वो कलीसिया के पास आता है तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास मनुष्य के ज्ञान के साथ नहीं आया और वगैरह वगैरह, क्योंकि यदि मैं आता तो तुम उसी में विश्वास करते। परंतु मैं तुम्हारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ के प्रमाण के साथ आया ताकि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में हो और आप यहाँ हैं, समझे? ये ठीक बात है। इन लोगों की बहुतों ने नकल करनी चाहिए परंतु उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया, जैसा कि आजकल वे करते हैं। यीशु के समय से पहले एक उठा और 400 लोगों को लेकर भटका ले गया। आप जानते हैं कि इनके विषय में पवित्र शास्त्र बताता है, उन्होंने समय से पहले ही कार्य करने का यत्न किया और बहुत सो ने उनकी नकल करनी चाहिए और वे सब ये वो था कुछ और थे। और उसने कहा कि अंत के दिनों में कैसे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और झूठे भविष्यवक्ता और चिन्ह और आश्चर्य कर्म दिखाएंगे। हमारे यहाँ वो सब हैं, देखा? परंतु वो सच्चे के सामने चल नहीं पाता, वो केवल उसे अधिक चमकदार बनाता है, क्योंकि हमारे पास सच्चा मसीह है, झूठा वाला नहीं। अब हम ये अनुभव करते हैं कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता है। उसकी यही विधि है कि वो अपना वचन अपने भविष्यवक्ता के होंठों के द्वारा लोगों तक लाता है। और ध्यान दें, आप जानते हैं कि मूसा ने कहा, यदि आप निर्गमन का 4वां अध्याय और 10वें और 12वें पद को पढ़ना चाहें, मूसा ने कहा परमेश्वर उससे बोला, परमेश्वर मनुष्य से होंठों से कान में बात करता है। और उसने कहा मैं बोलने में निपुण नहीं। मूसा ने कहा मैं योग्य नहीं हूँ, मैं नहीं जा सकता। उसने कहा किसने मनुष्य को बोलने वाला या गूंगा बनाया? किसने उसे देखने वाला बनाया या किसने उसे सुनने वाला बनाया? क्या मैं ही प्रभु नहीं? उसने कहा मैं तेरे मुख के साथ होऊंगा, समझे? इसलिए और यर्मिया ने कहा, यदि आप इसे यर्मिया 1:6 में पढ़ना चाहें, यर्मिया ने कहा परमेश्वर मेरे मुंह में वचन डाल, समझे? वो होंठों से कान में बोला एक भविष्यवक्ता के साथ और दूसरे भविष्यवक्ता के द्वारा बोला, और वो अपने नियंत्रण में नहीं था और परमेश्वर उसके होंठों के द्वारा बोला, और वो अपने वचन को बुलवाना जानता है। आप जानते हैं, जी हां श्रीमान। इसलिए आप देखते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, न कि मनुष्य का वचन। मूसा ने कहा परमेश्वर मुझसे आवाज के साथ बोला और मैंने उसे सुना, जो उसने कहा मैंने लिख दिया। यर्मिया ने कहा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, और पहली चीज आप जानते हैं, मेरे होंठ बोल रहे थे और मैं लिख रहा था। परमेश्वर उसके होंठों के द्वारा बोला और वो घटित हो गया। डैनियल, यशाया और जो भी थे, वो सब भविष्यवक्ता इसी तरह से थे। आप जानते हैं कि केवल पुराने नियम में 2000 बार से भी अधिक उन भविष्यवक्ताओं ने यहोवा यूं कहता है कहा। अब यदि मनुष्य कहता है कि यहोवा यूं कहता है, तो ये मनुष्य नहीं बोल रहा है। यदि वो भविष्यवक्ता नहीं है तो वो एक ढोंगी है, देखा? क्योंकि वैसा कभी नहीं होगा। 1,00,000 बार में से एक बार हो सकता है कि वो अनुमान लगा ले, परंतु यदि वो यहोवा यूं कहता है और प्रभु परमेश्वर ने ये कहा है, यदि मैं कहूँ और मैं नेविल यूं कहता है, मेरे भाई मन इस प्रकार कहता है, और मैं कहूँगा मेरा भाई वाइल इस प्रकार कहता है, इनमें से या उनमें से कोई भाई, आप में से कोई भी, मैं बोल रहा हूँ जो आपने कहा है। यदि मैं सच्चा हूँ तो मैं वही कह रहा हूँ जो आपने कहा है। और ये लोग भविष्यवक्ता होने के नाते कहते हैं ये मैं नहीं हूँ, मेरा इससे कुछ मतलब नहीं है, परंतु ये यहोवा यूं कहता है। इसलिए बाइबल भविष्यवक्ताओं द्वारा यहोवा यूं कहता है। ध्यान दें, उन्होंने मसीह का आत्मा अपने ऊपर ले लिया और आने वाली घटनाओं को जो होने वाली थी पहले से बता दिया। आने वाली बात को बताने के विषय में उन्होंने बताया कि आने वाले युगों में क्या क्या होगा, जैसे कि वो मसीह की आत्मा में बैठते, खड़े होते, लेटते, चलते, वो आत्मा उन पर इतना होता था कि वो मसीह की तरह आचरण करते थे। और पढ़ने वाला इसे पढ़ेगा और सोचता है कि भविष्यवक्ता अपने से कह रहा था। आपको याद है जब खोजा यशाया 53:1 पढ़ रहा था इस विषय में कि किस प्रकार से वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। खोजे ने फिलिपुस से कहा कि भविष्यवक्ता ये अपने विषय में बोल रहा है या किसी और व्यक्ति के विषय में? देखिए, भविष्यवक्ता ऐसे बोला जैसे वो स्वयं था। दाऊद को देखिए, वो आत्मा में रोता है, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दाऊद कहता है वे मेरी हड्डियां वे मेरे ओर घूरते हैं, मेरी ओर, उन्होंने मेरे पैरों और हाथों को छेद दिया है। दाऊद, उन्होंने मेरे पैरों और हाथों को छेद दिया है, परंतु तू मेरे प्राणों को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, ना ही तू अपने पवित्र जन को सड़ने देगा, जैसा कि दाऊद अपने ही विषय में पवित्र होने के नाते बोल रहा हो। ये दाऊद का पुत्र था जिसने कि आत्मिक बीज को अंकुरित किया जो कि आने वाला था। यद्यपि दाऊद अपने में जंगली बीज था, परंतु उसके अंदर गेहूं का बीज था। आप समझे? ये इसलिए संपूर्ण बाइबल ये मनुष्य का वचन नहीं है, न ही ये मनुष्य के द्वारा लिखा गया है, लाया गया, या न ही ये मनुष्य के द्वारा प्रकाशित किया जा सकता था। ये परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रकाशित किया गया, जो कि स्वयं उसकी व्याख्या करता है। मसीह स्वयं अपने को अपने वचन में प्रकाशित कर रहा है। मसीह को देखिए, जो पीछे दाऊद में है। दाऊद अब सोच भी नहीं सकता जैसा कि था, उसके विचार अब अपने आपे में नहीं है, और वो क्रूस पर लटका हुआ था, जैसा कि आप यहाँ इस मूर्त में देखते हैं। क्रूस पर लटके हुए वो चिल्लाता है, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मेरी सारी हड्डियाँ वे मेरी ओर घूरते हैं, उन्होंने मेरे हाथ और पांव छेद दिए हैं, उन्होंने मेरी पसली को भेद दिया है। देखा, तू क्यों मुझसे दूर है। बाशान के सारे सांडों ने मुझे घेर लिया है, वे सिर हिलाते हुए कहते हैं, इसने परमेश्वर पर विश्वास किया, क्या वो इसे छुड़ाएगा। अब हम देखें, यदि वो इसे छुड़ाए, बिल्कुल वही शब्द बोल रहे हैं। इसलिए आप देखें, जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ, उसने वही शब्द बोले जो दाऊद ने कहे। समझे आप। इसलिए देखिए, ये मनुष्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर दाऊद में था, वो दाऊद नहीं था। वो नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा है। वो आत्मा में इतना आ गया था। इसी प्रकार से मूसा भी था, वो आत्मा में इतना आ जाता था कि जिस विस्तार में वो रहता था उससे आगे निकल जाता था, और वो उस जलती झाड़ी के सामने खड़ा परमेश्वर से ही बातें कर रहा था। उसने कहा, अपने जूते उतार, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। मैं कल्पना करता हूँ, जब मूसा वहाँ से चला आया तो उसने सोचा, ये क्या हुआ, क्या घटित हुआ, ये क्या था। उसने कहा, तू मिस्र को जा और मैं तेरे साथ होऊंगा। उसने कहा, ये तो मेरे लिए वास्तविक है, मुझे जाना चाहिए। उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लिया, यानी कि अपने बच्चे को लिया, और अपनी छड़ी हाथ में लेकर लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र को चला गया। देखा, परमेश्वर स्वयं भविष्यद्वक्ता के द्वारा बोल रहा है। देखिए, वे सच में वो भविष्यद्वक्ता नहीं है, वो परमेश्वर था, क्योंकि भविष्यद्वक्ता स्वयं उन बातों को नहीं कह सकते थे। किसने हमारी बातों का विश्वास किया। आप देखिए, यशायाह ये कहता है, हमारी बातों का किसने विश्वास किया, किस पर यहोवा का भुजबल प्रकट हुआ। वो घुड़साल में हमारे सामने बछड़े की तरह बड़ा होगा, और अब वो कैसे हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया था, हमारे अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे। हम पहले ही इस युग में चंगे हो गए थे, और यशायाह मसीह से 800 वर्ष पहले दृष्टिगोचर हुआ। समझे, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम पहले ही चंगे हो गए थे। भूतकाल, परमेश्वर का वचन कितना सिद्ध है। लोगों, इसमें विश्वास कर लो, केवल यही तुम्हें बचा सकता है। सारे दूसरे वचन मैं चिंता नहीं करता कि वो किस तरह लिखे हैं, कैसे और किसके द्वारा आए हैं, किस नामधारी गिरजे से आए हैं, या वो मनुष्य कितनी तीव्र बुद्धि का है। कोई भी चीज जो वचन विरोधी है, मैं उसकी परवाह नहीं करता। यदि आप ये लेख नोट करना चाहते हैं तो गलतियों 1:8 है, समझे। और उसने कहा, यद्यपि हम या कोई स्वर्गदूत भी स्वर्ग से कोई और सुसमाचार सुनाए, उसे छोड़ जो तुमने पहले सुन चुके हो, तो शापित है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई स्वर्गदूत स्वर्ग से आपके पास आए और एक चमकदार ज्योतिमय स्वर्गदूत और आकर खड़ा हो जाए, बालक ये इन दिनों में मछली के कांटे के समान होगा, क्या नहीं होगा। एक चमकदार स्वर्गदूत आकर यहाँ खड़ा हो जाए और वचन विरोधी बातें कहे, और आप कहिए, शैतान मुझसे दूर हो जा, ये ठीक बात है। यदि वो बिशप हो, यदि वो चाहे जो भी हो, आप कभी उसका विश्वास न कीजिए। यदि वो बाइबल के साथ शब्द दर शब्द नहीं बोलता, उसका ध्यान रखिए, वो आपको अभी तो बाइबल के साथ ले चलेगा, तब वो आपको लेकर एक स्थान पर आ जाएगा, और तब वो आपको वहीं फंसा कर रोक देगा कि बाइबल एक बात कह रही है, और वो उसे छोड़ता हुआ आगे बढ़े। वहीं उसे देखें, देखिए, उसने हवा के साथ भी ऐसे ही किया गया। वो आया, हर बात को वैसे ही ठीक कहा। देखो, परमेश्वर ने ये कहा है, ये ठीक बात है। हवा ने कहा, आमीन, हम दोनों एक साथ यही विश्वास करते हैं। देखिए, परमेश्वर ने ये कहा है, आमीन, हम एक साथ यही विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने कहा, हम इसका पक्का विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, हम मर जाएंगे। अरे, अब आप जानते हैं कि वो एक अच्छा परमेश्वर है। उसने नहीं कहा वो नहीं करेगा, आप जानते हैं, परंतु निश्चय ही ओ वो यही है। और यदि वो इस प्रकार का धोखेबाज था, और बाइबल ने कहा कि अंत के दिनों में वो यदि हो सके तो चुनावों को भी धोखा दे देगा। मित्रों, हमें आज कहाँ होना चाहिए। अब संडे स्कूल के छोटे छोटे पाठ बिल्कुल हमारे हृदयों के पास रहने चाहिए। इसे देखने के लिए हमें इन बातों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, और देखें कि ये चीजें कितनी धोखेबाज हैं। ध्यान दें, हम किसी मनुष्य के वचन ना सुन सकते हैं, ना ही सुनने चाहिए। हम परवाह नहीं करते कि वो कितना बुद्धिमान और कितना शिक्षित है। बाइबल नीति वचन में कहती है हमें अपने तर्क छोड़ देने चाहिए। देखिए, अब यहाँ इस दूसरे क्षेत्र में आपकी इंद्रियों का पहला क्षेत्र देखना, चखना, छूना, सूंघना और सुनना, ये हमारे शरीर के बाहरी भाग में है, और अंदर वाले देह में जो कि आत्मा है, तर्क वितर्क और विचार और वगैरह वगैरह है, हमें वो सब छोड़ देना चाहिए। तर्क वितर्क नहीं कर सकते। जैसे कि जरा ठहरिए, यदि परमेश्वर भला परमेश्वर है और हमें आज तक यही बताया गया है कि वो है, यदि वो भला परमेश्वर है, और तब यदि मैं सच्चा हूँ, यद्यपि मैं बाइबल में नहीं देख सकता कि ये ठीक है, जबकि वो है, यद्यपि मैं सच्चा हूँ, मैं बचा लिया जाऊंगा, आप नष्ट हो जाओगे। यदि मैं गिरते जाता हूँ और उन्हीं बातों को करता हूँ जिन्हें मैं विश्वास करता हूँ कि ये ठीक है, और उन्हीं बातों को पकड़े रहता हूँ जिन्हें मैं सोचता हूँ कि ये ठीक है, भाई मैं आप अब भी बर्बाद हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आप बच नहीं पाएंगे, आप नष्ट हो जाएंगे, समझे। देखिए, वो मनुष्य के अंदर होना चाहिए जो नियंत्रण रखता है। भाई बर्नम, मैंने अन्य भाषा बोली है। भाई बर्नम, क्या आप अन्य भाषा बोलने में विश्वास नहीं रखते? बिल्कुल। देखिए, मैं चिल्लाया, क्या आप ये विश्वास नहीं करते? जी हाँ श्रीमान, मैं एक अच्छा मसीह जीवन व्यतीत करता हूँ, क्या आप ये विश्वास नहीं करते? जी हाँ श्रीमान, परंतु अब भी इसका अर्थ ये नहीं कि आप बच गए। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, साफ आचरण वाले, पवित्र, अच्छे व्यक्ति। इस प्रकार वो याजक भी थे, हृदय से धार्मिक थे, इतने धार्मिक कि वे गलत अर्थ लगाएं तो उन्हें पथरवाह कर दिया जाए। परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ करने पर मृत्यु दंड मिलता था। आज हमारे राष्ट्र के साथ ये मामला है। इस पृथ्वी पर हमारे बीच में बहुत सी कमियों का कारण ये है कि कठोर दंड नहीं है। यदि कोई मनुष्य किसी और की पत्नी के साथ भाग जाए तो उन्हें जनता के सामने लाकर और सबके सामने बधिया करके छोड़ देना चाहिए, ये ठीक बात है। यदि कोई व्यक्ति कुछ करता हुआ पकड़ा जाए, सड़क पर तेज गति से वाहन चला रहा हो, और उसे 10 वर्ष से कम दंड होना चाहिए, वो पूर्व नियोजित हत्यारा है, समझे। आप इस तरह के दंड रखेंगे तो आप उन्हें दबा पाएंगे। परंतु जब कोई भ्रष्ट राजनीतिज्ञ इसको सुनकर टालते हुए कहता है, उसने जरा पी रखी थी, वो था, परंतु उसने ये जानकर नहीं किया, और वो एक व्यक्ति पत्नी और सारे भोले भाले बच्चों को मार डालता, बस किसी तरह से ये आवारा बच जाए, ये राजनीति है, ये संसार है, ये शैतान है। परमेश्वर ने कहा यदि कोई पुरुष या स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए, उन्हें बाहर लेकर पथरवाह कर दो, बस, समझे। यदि कोई सबत के दिन लकड़ियों के गठे का भार उठाए हुए सबत के दिन उसे ले लो और पथरवाह कर दो, तब वे इसके द्वारा जीवित रहे। और अब हमारे यहाँ आज ऐसी व्यवस्था नहीं है, परंतु मसीही, वो कलीसिया जिससे मैं आज प्रातः बात कर रहा हूँ, परमेश्वर की व्यवस्था उनके हृदय में है, समझे। आपके अंदर ऐसा करने की इच्छा ही नहीं है, यहाँ अंदर की ओर आप परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या है, आप वही होना चाहते हैं जो कि, यदि परमेश्वर को दरवाजे के पांवदान की आवश्यकता हो, वो आपको चाहता हो कि आप दरवाजे का पांवदान बने, तो आप वो बनने के लिए प्रसन्न होंगे। इसका कोई मतलब नहीं कि क्या होगा, आप पांवदान बनना चाहेंगे, समझे। परमेश्वर आपसे जो भी करवाना चाहे, आप वही चाहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। अब यहाँ इस प्रकार आप सच में सही सच्चा प्रेम परमेश्वर से कर पाएंगे। और अब हम ये पाते हैं कि स्वर्गदूत जो पहले से आ चुका है, उसको छोड़ कुछ और प्रचार है जो बाइबल में पहले से ना कहा गया हो, तो वो श्रापित हो। कोई भी इसको नहीं कर सकता, ये तो वैसे ही होना चाहिए जैसा कहा है। और प्रकाशित वाक्य 22:18-19 में हम फिर पढ़ते हैं, यदि कोई मनुष्य इसमें एक भी शब्द बढ़ाएगा या इसमें से एक भी शब्द घटाएगा, तो परमेश्वर जीवन की पुस्तक में से उसका भाग निकाल देगा। ठीक है, परमेश्वर उसका भाग निकाल देगा, यद्यपि वो सेवक भी हो, वो जो भी हो, और उसका वचन, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। परमेश्वर ने कहा मैं उसका नाम वहाँ से मिटा दूंगा, ये ठीक बात है। यदि वो इसमें एक भी शब्द इसमें मिलाता है या एक भी शब्द इसमें से निकालता है, समझे। इस प्रकार से अचूक परमेश्वर ने अपना वचन बनाया है। देखा, कलीसिया में मिला सकते हैं या कलीसिया में से निकाल सकते हैं। वचन में कुछ ना मिलाए या उसमें से ना निकालें, क्योंकि परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल देगा, और तब आप समाप्त हो गए, समझे। आप इसमें नहीं मिला सकते या इसमें से निकाल सकते हैं, ये वैसा ही रहेगा जैसा है। इसमें व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल ने कहा कि परमेश्वर स्वयं बाइबल की व्याख्या करता है। पत्रस ने कहा इसकी कोई व्यक्तिगत व्याख्या नहीं होती, ठीक है। और सारा पवित्र शास्त्र दिव्य रूप से दिया गया है, दिव्य रूप से क्रमबद्ध किया गया है, और सारा का सारा यीशु मसीह का प्रकाशन है, जबकि नया और पुराना नियम दोनों उसके आने के लिए पहले से बताते हैं कि जब वो यहाँ आएगा तो क्या करेगा और उसके आने वाले युग में क्या करेगा। इसलिए इस प्रकार से वो कल, आज और सर्वदा एक सा हो जाता है, समझे। जैसे कि इब्रानियों में पौलुस ने लिखा है, वो परमेश्वर है बीते कल का यीशु मसीह, पुराने नियम वाला, वो आज का यीशु मसीह देह में प्रकट हुआ, और वो सदैव का यीशु मसीह आत्मा में है, आने वाला, समझे। कल, आज और सर्वदा एक सा है, और वो अपने वचन को जीवित रखने के लिए सदा जीवित है। जो भी उसने कहा वही उस युग में होगा। वो जीवित है, वो पुराने नियम में जीवित था और प्रकट हुआ। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ, यदि आप समझ सके। ध्यान दीजिए, जब यीशु पुराने नियम में प्रकट हुआ, जैसा कि हम इसका विश्वास करते हैं, आप प्रचारक लोग, आप जो हैं, इस पर वाद विवाद कर सकते हैं, आप जो चाहे करें, परंतु मैं अपने लिए कह रहा हूँ जैसा कि मैं सोचता हूँ। देखा, जब यीशु पुराने नियम में थियोफनी में एक व्यक्ति मेलकीसदक में प्रकट हुआ, याजक पद में नहीं, परंतु एक व्यक्ति, एक पुरुष, समझे, क्योंकि इस मनुष्य ने अभी तक जन्म नहीं लिया था, परंतु वह थियोफनी में था, इसलिए उसके न पिता था न माता, वह स्वयं परमेश्वर था। वो एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ और शालोम का राजा कहलाया, जो कि शांति का राजा है और धर्म का राजा है। देखा, वो मेलकीसदक था, उसके न पिता न माता और न ही दिनों का आरंभ या जीवन का अंत है। देखा, ये यीशु थियोफनी में था, एक मनुष्य के रूप। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तब वो सही में मनुष्य की देह में बन गया था और हमारे बीच डेरा किया, स्वयं एक व्यक्ति यीशु मसीह, जो कि कुंवारी मरियम से जन्मा। वो इस रूप में आया ताकि वो मर सके और वापस स्वर्ग चला गया। अब इन अंतिम दिनों में उसने अपने को आपको पूर्ण रूप से प्रकट करने की फिर प्रतिज्ञा की, उसकी देह और आत्मा में, समझे, क्योंकि जैसा सादोम के दिनों में था, उसी तरह मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। अब सादोम को देखें, वो कैसा था, उसमें क्या हुआ, और यीशु मसीह जैसा कि आजकल अपनी कलीसिया में एक देह के रूप में प्रकट हो रहा है। देखा, वही बातें, वही काम, वही चीजें जो उसने सारे समय पहले किया, कभी नहीं बदलता, वो जो अनंत है, समझे। और आज पृथ्वी पर अपने आप को मनुष्य शरीरों के द्वारा प्रकट कर रहा है, हम शारीरिक मनुष्यों को, जिनको उसने बुलाया और वही कार्य किए, वही बातें जो उसने बीते हुए समय में की और अपनी देह के दिनों में जब वो पृथ्वी पर था, और आज भी वही कार्य कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति से, भविष्य दत्ताओं के द्वारा बातें करके, इन अंत के दिनों में हमसे अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बातें की। देखा, अंत के दिनों में पुत्र प्रकाशित हो रहा है, परमेश्वर मनुष्य की देह में प्रकट हुआ, सादोम के नष्ट होने के थोड़ा सा पहले आया, अन्य जातियों के संसार का अंत। आप ये देखते हैं, यहाँ तीन प्रकटीकरण हैं। अब जो अगली बात होती है, जब वो सबको एक व्यक्ति में जमा कर लेता है, यीशु मसीह, दुल्हन और देह, प्रभु यीशु के शारीरिक आगमन पर अपने तीन बार को पूरा करेगा, जब वो पृथ्वी पर लाया गया, मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, जीवित हो उठा, अपने आप को अपने शारीरिक रूप में प्रकट किया, जो कि इसकी दुल्हन है, वो स्त्री, अब समझे, वो उसके शरीर का भाग है, और स्त्री और पुरुष परस्पर इतने मिल जाते हैं, जब तक कि लगभग वे एक समान हो जाते हैं। जैसा भी हो, उन्हें होना ही चाहिए। यहाँ वे हैं, देखिए, वे बिल्कुल उसी प्रकार प्रकट हुए हैं। वो उसका भाग है, क्योंकि वो उसी में से निकाली गई है, और आज दुल्हन मसीह की देह में से निकाली गई है, जो कि वही आचरण और कार्य कर रही है, जो कि उसने इस दिनों के लिए कहा है कि वो करेगी। वो दुल्हन, वो रानी, राजा और रानी। ठीक है, अब हमें देर हो रही है, इसलिए हम जल्दी करने जा रहे हैं। ठीक है, संपूर्ण बाइबल यीशु मसीह का पूर्ण प्रकाशन है, और उसको हर युग में प्रकट करता है। उसने अपने को लूथर के दिनों में प्रकट किया, एक नेव की तरह, एक कलीसिया, पांव, टांगे, जिस प्रकार की उसने राजा नबूकदनेस्सर से किया। आपको याद है उसने कैसे वे स्वप्न देखे और सिर से पांव की ओर नीचे आया, समझे, पैरों से ऊपर आ रहा है, समझे। बाबुल के राज्य में उसने पुराने नियम को दिखाया, वो सिर से नीचे को आया, वो जब तक नहीं आया जब तक परमेश्वर स्वयं उस सीढ़ी के पैरों तक आकर देह ना बन गया। अब इस नए नियम में वो अपने को फिर से वापस ला रहा है, सिर की ओर, फिर से वो सोने का सिर, जिसको ताज पहनाना है, समझे। देखिए, ये समझ गए, देखिए, परमेश्वर आरंभ में था और वो भविष्य दत्ताओं द्वारा होता हुआ नीचे आया, और इतने नीचे आया जब तक कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य की तरह नहीं बन गया, कीड़ी के नीचे के पैरों तक। एक बालक गौशाला में जन्मा, उससे घृणा की गई, अस्वीकार किया गया, तिरस्कृत किया गया और बदनाम किया गया, वगैरह वगैरह, वो था। तब वो उठना आरंभ हुआ, देखिए, और फिर पांव से उसने कलीसिया बनानी आरंभ की। वो दुल्हन वापस और वापस आ रही है और अब चोटी के पत्थर में आ रही है जहां पर जुड़ती है और एक महान यीशु मसीह की देह का स्वरूप बन जाती है। परमेश्वर अपने वचन की प्रतिज्ञा के द्वारा हर युग में उस युग के लिए प्रकट हुआ। अब आइए हम देखें उसकी कुछ प्रतिज्ञाओं को जो उसने आज के लिए की हैं, इन अंतिम शब्दों के साथ जब हम इसे समाप्त करने जा रहे हैं। अब परमेश्वर स्वयं को सांझ के उजियाले के समय में प्रकट कर रहा है। अब आइए हम देखें, हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत से हवाले लिख रखे हैं, जैसा कि आप इस पन्ने पर देख सकते हैं कि कितने हवाले लिखे हुए हैं, परंतु अभी 12 बजने में हमारे पास 15 मिनट हैं। मैं जाना चाहता हूँ। आज प्रातः बोलते हुए मेरा गला नहीं खरखराया। कभी कभी ये एयर कंडीशन मेरे गले को सच में खरखरा देते हैं। इसलिए यदि भाई नहीं, आज रात के लिए आपके पास तो कुछ नहीं है? ठीक है, मैं करूंगा यदि ये ठीक रहा। मेरे पास कुछ है। उस दिन जंगल में मुझे एक सिगरेट का पैकेट मिला और मुझे सिगरेट के पैकेट पर से एक संदेश आज रात के लिए मिला। प्रभु की इच्छा हुई मैं समझे, इसलिए मेरे पास कुछ पद है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता इसलिए कि आप वापस हो सके। एक सिगरेट की डब्बी बोल रही है। मैं जंगल में घुसा ही था कि वहाँ सिगरेट की डब्बी पड़ी थी और मैं बस अपने ही रास्ते चला गया। मैंने सोचा कि भाई कोई मेरे आगे है, किसी चीज ने कहा वापस जाओ उसे उठा लो। मैंने सोचा सिगरेट की डब्बी उठा लू, नहीं मैं नहीं, किसी चीज ने कहा वापस जाओ और सिगरेट की डब्बी को उठा लो। और मैं वहाँ गया, वहाँ एक पुरानी खाली डिब्बी थी और मैंने कुछ देखा। आज रात मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा, प्रभु ने चाहा तो। ठीक है, अब हम थोड़ी देर के लिए सांझ के उजियाले के विषय में बोलने जा रहे हैं। बाइबल ये भविष्यवाणी करती है कि अंत में एक समय आएगा कि सूर्य निकलेगा और तब सांझ का उजियाला होगा। हम सब ये जानते हैं, क्या हम नहीं जानते? हम लोग जो अपने आज के इस संदेश से जो प्रभु यीशु ने दिया है परिचित हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि सांझ का उजियाला होगा और ये सांझ का उजियाला सच में एक महान उजियाला आएगा जब यीशु स्वयं इस पृथ्वी पर प्रकट होगा या स्वर्गों में जब वो अपनी दुल्हन को ले जाएगा और तब दसवीं शताब्दी आरंभ होगा। परंतु हमारे सामने एक बहुत ही भयानक समय है जिसमें से होकर निकलना है जो कभी भी मनुष्य जाति के सामने नहीं आया, और मैं उसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और जब भी हमसे हो सकेगा हर एक को ये अवसर मिल सकता है कि जब आप अपने कार्य से हटकर कुछ दिन कहीं बिताएं जहाँ मैं उन विपत्तियों और उन बातों को जो अंत में होने वाली हैं बोलूं, और इस पर लगभग 2-3 सप्ताह लगाएंगे और उनको एक साथ इकट्ठा करके यदि प्रभु ने मुझे ये करने के लिए जीवन दिया और मुझे ये करने की प्रेरणा दी, देखिए कैसे वो चीजें जमा होंगी, वे गर्जनाएं, तब आप समझ पाएंगे कि वो मनुष्य और वे लोग किस विषय में सपन देखते हैं और वे सब बातें वे घटित होंगी। देखिए तब आप देखेंगे उन्हें क्या प्रकट हुआ, वो महान गर्जन जो आ रही है आकाशों से आ रही है। अब ये सच है कि आप लोगों का ये झुंड जानता है, मैं जानता हूँ कि इसका क्या अर्थ है, समझे? और परंतु हमें थोड़ी प्रतीक्षा करें जब तक समय ना आए। देखिए इसके लिए, अब देखिए ये समय पर ही होगा। हम यहाँ थोड़े से पद पढ़ने जा रहे हैं। अब ये सांझ का उजियाला आता है, हम देखते हैं ये वैसा ही उजियाला होगा जो प्रातः में था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सूर्य प्रातः और दूसरा सूर्य दोपहर बाद का होगा। ये एक ही सूर्य है, वही सूर्य जो दोपहर बाद का है वही प्रातः का है, वही जो प्रातः में है वही दोपहर बाद है। अब ये कहा दिन स्वयं ही उस समय के बीच का दिन कुछ इस तरह का होगा, वो जैसे उचाट अंधेरा दिन, वो दिन या रात कुछ भी ना कहलाएगा, उसके बीच का होगा। देखिए वही देह का बनना होगा पांव की ओर से ऊपर की ओर। जब वो यहाँ पृथ्वी पर था वो पुत्र था, एक उजियालापन, तब वो मार दिया गया था, कलीसिया ने उसका स्थान ले लिया, तब अंधेरे युग में गुजरते हुए सत्य के लिए शहीद हुए और नेव पर बनना आरंभ हो गए। तब दृष्टि कहाँ से आई? सिर की चोटी से। नबूकदनज़र के दर्शन को देखिए, उसे अन्य जाति की युग से नीचे जाते हुए देखिए। इससे पहले कि उनके छुटकारे के लिए लहू बहाया जाता, वे स्वर्ग धर्म त्यागी थे जो अंदर आए, परंतु ध्यान दें, वो नीचे और नीचे और नीचे तले की ओर चला गया पृथ्वी रूप में। देखिए वो नीचे आया, तब उसने वापस चलना आरंभ किया, वापस आ रहा है, वो कलीसिया पांव की ओर से वापस आ रही है। अब वो सिर के समय में है, सिर का समय। अब ध्यान दें, उजियाले को आप अपने हाथ से नहीं देख सकते यद्यपि वो आपके शरीर का अंग है, आप कान से नहीं देख सकते जबकि वो सुन सकता है, आप नाक से नहीं देख सकते जबकि वो सूंघती है, आप नहीं, आप फोटो से नहीं देख सकते यद्यपि वो बोलते हैं। देखिए वो पेंतेकोस्तल युग था, परंतु अब ये आँखों के समय में है देखना। अब आँख से ऊपर कोई हिलने वाली और ज्ञान करने वाली कोई इंद्री नहीं है, ये ठीक है ना? इसके बाद बुद्धि जो कि यीशु मसीह स्वयं है, जो कि देह को नियंत्रण में रखता है। इसके बाद हिलने चलने वाला कुछ नहीं, समझे? हर चीज हिल चुकी है, समझे? अपने पैर हिलाइए, अपने पैरों की मांसपेशियां हिलाइए, हर चीज हिलती है। अपने आपके कान हिल सकते हैं, आपकी नाक, आपके होंठ और वगैरह वगैरह, परंतु आँखों के बाद फिर कुछ नहीं हिलता। इसके कारण वे दावा करते हैं कि मनुष्य जल्दी गंजा हो जाता है, क्योंकि देखिए ऐसी कोई कसरत नहीं जिससे कपाल की मांसपेशियां बढ़ सकें सर के बालों में, समझे? और ये गद्देदार भी नहीं है जिससे कि इसमें खून का दौरा पहुंचे। लहू वहाँ नहीं चढ़ता, देखिए वो वहाँ नहीं चढ़ेगा लहू पहुंचाने के लिए, यद्यपि बालों की जड़ लहू द्वारा जीवित रहती है। और अब हम देखते हैं कि इस भाग को आँख के बाद कुछ नहीं। अब आइए हम देखें, उजियाला होगा लगभग दिन के बीच में, सांझ के समय में। उजियाला क्यों भेजा गया? ताकि आप देख सकें कि आप कहाँ हैं, इसके आसपास कैसे रहें, ठीक है ना? देखिए आप कहाँ हैं। लगभग सांझ के समय उजियाला होगा। अब हम इसको लेकर मलाकी 4 से तुलना करेंगे। उसने ये प्रतिज्ञा की है कि सांझ के समय फिर से उजियाला होगा, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे पास एलिय्याह भविष्यद्वक्ता को भेजूंगा और वो बालकों के हृदयों को पूर्वजों की ओर फेरेगा, ठीक है ना? और पूर्वजों को बालकों की ओर, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को नाश करूं। अब आइए हम यूहन्ना को लें या संत लूका 17:30 और देखें कि यीशु ने वहाँ क्या भविष्यवाणी की, कहते हुए हैं कि जैसे सादोम के दिनों में था वैसा ही होगा। ध्यान दें, अब याद करें, ये उस समय पर था जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होना था, मनुष्य के पुत्र का प्रकटीकरण। अब सही में मनुष्य का पुत्र एक शक्ति में प्रकट हुआ, वहाँ पर कुछ क्षणों के लिए, सादोम के भस्म होने से जरा से पहले। अब वो व्यक्ति एलोहिम था, वो परमेश्वर था, और यीशु परमेश्वर है। और परमेश्वर कुछ क्षणों पहले इब्राहिम से बात करने के लिए प्रकट हुआ, जांच पड़ताल के न्याय में। थोड़ी देर के लिए मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ था, वो मनुष्य का पुत्र एलोहिम। कलीसिया, क्या आप देख पाते हैं? मनुष्य का पुत्र एलोहिम कुछ मिनटों के लिए प्रकट हुआ, क्योंकि अगली ही प्रातः वो जल गई थी, इससे पहले कि सूर्य फिर से निकले, ताकि कोई भी संस्था ना बचे, नहीं वहाँ कोई और उन्नति हो सके जो कि अब चल रही है, क्योंकि फिर से दिन निकलने के पहले वो जल जाए। राष्ट्र में बेदारी समाप्त हो चुकी है, अब कोई और बेदारी नहीं आएगी, वो बड़ी छा जाने वाली बेदारी इस राष्ट्र को नहीं मिलेगी। बुद्धिमानों की संगति हो सकती है, परंतु मेरा अर्थ आत्मिक बेदारी से है। हम ये सब देख चुके हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। मैं इसको कुछ इस तरह से कह रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, समझे? ये समाप्त हो गया है। एक अच्छे सेवक ने कुछ समय पहले कहा कि भाई ब्रणम, यदि मैं अपने हृदय में प्रभु को आनंद प्राप्त कर सकूं, मैंने कहा पुत्र बेदारी समाप्त हो गई है, समझे? अब जहाज स्थिर हो चुका है, बड़ी भयानक लहरें हमारे सामने हैं, परंतु हम जानते हैं इन लहरों के पार हम किनारे के पास हैं, हम किनारे के पास हैं। केवल स्थिर रहिए, वचन में स्थिर रहिए, परमेश्वर के साथ स्थिर रहिए। कोई चिंता नहीं कि आपको कैसा लगता है, कुछ भी हो, वचन के साथ स्थिर रहिए, इसे स्थिर रखें। जब आप ये बड़े बादल चारों ओर देखते हैं और तूफान आ रहे हैं, परमाणु बम और हर चीज जिसके विषय में ये बात कर रहे हैं, परंतु हमारा स्थिर करने वाला केवल वचन में है। परमेश्वर ने कहा ये होगा, हम सबको कुचल देंगे। जी हाँ, हम उन सब के ऊपर चढ़ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, वे हमें दबा नहीं सकते, हमें डुबा नहीं सकते। तुम हमें कब्र में दबा दो, हम फिर भी बाहर निकल आएंगे। अब केवल यही होना है, इस संसार में अब कोई विधि नहीं है इसे नीचे रख सके। हम इन सबको कुचल देंगे, क्योंकि हमारा बड़ा कप्तान दूसरी ओर से पुकार रहा है। हमने यीशु में लंगर डाले हैं, जीवन के तूफान में चढ़ाई करूंगा। मैं यीशु में लंगर डाल दिया है, मुझे तूफान और लहरों का कोई भय नहीं। जो कुछ भी हो, होने दीजिए, जो भी हो, जो भी होगा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम यीशु के अंदर लंगर डाले हुए हैं। यदि मैं जीऊंगा तो परमेश्वर की महिमा के लिए जीऊंगा, यदि मैं मरूं तो परमेश्वर की महिमा के लिए मरूं। मैं जैसा हूं वैसे ही रहूं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, यही है जो मैं करना चाहता हूं। जब ये सब हो जाए तब मैं फिर यहां नहीं रहना चाहता हूं, मैं वहीं जाना चाहता हूं जहां मेरे लिए इनाम है जो उसने मेरे लिए खरीदा है, वो नहीं जो मैंने कमाया है, परंतु जो उसने मेरे लिए खरीदा है और जिसे उसने मुझे अपने अनुग्रह से दिया है। इसलिए हम देखते हैं सांझ का उजियाला यहाँ है, और यदि आपके पास देखने के लिए आंखें ना हो तो उसके उजियाले से क्या होगा, कैसे उसके पास आएंगे? सांझ का उजियाला क्या है? उजियाला आता है कि कुछ प्रकाशित करे, ये ठीक बात है ना? यदि यहाँ पर कुछ हो और आप उसे अनुभव कर सकते हो और उसे समझ नहीं सकते कि अंधकार में क्या है, तो आप उजियाला करें। ये प्रकाशित करने के लिए है। मलाकी 4 क्या करता है? देखा, वही काम करता है। 7 मोहरों के खुलने से क्या मतलब है? जबकि सारे संगठन इस विषय में हिचकिचाते हैं, ये प्रकाशित प्रकट करती है। यदि आपके पास आंख नहीं है तो इसके प्रकाशित होने का क्या लाभ? पहले आंख होनी चाहिए देखने के लिए, ये ठीक बात है ना? मलाकी 4 के लिए, संत लूका 17:30, संत यूहन्ना 14:12, यूहन्ना 15:24, 16:13 भी प्रकाशित करने के लिए हैं। और ये प्रकाशित वाक्य 10:1-7 भी प्रकाशित करता है। 7 मोहरों का खुलना और 7वें दूत का संदेश खोलने के लिए प्रकाशित करने के लिए जब सांझ का उजियाला आएगा। अब यदि मनुष्य इस लोदिकिया युग के अंदर, क्या लोग नंगे हैं? उजियाला अंधे व्यक्ति के लिए क्या करेगा? यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? नंगे, अंधे और नहीं जानते, यहाँ तक कि उनके मस्तिष्क की इंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं, उनके मस्तिष्क की आत्मिक इंद्रियां, आत्मिक समझ। देखा, अभिमानी, घमंडी, परमेश्वर से अधिक सुख विलास के चाहने वाले, धोखेबाज, झूठा दोष लगाने वाले, असंयमी, भलों के बैरी, भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को न मानेंगे, वो प्रकाशन की सामर्थ में विश्वास तक नहीं करते। देखा, वे भविष्यद्वक्ताओं जैसी बातों में विश्वास नहीं करते और इसलिए वे उन बातों में विश्वास नहीं करते। वे विश्वास करते हैं कि मलाकी 4 एक विशेष कलीसिया है या विशेष संस्था है। जब वो पहली बार आया तो वो मनुष्य था, जब वो दूसरी बार आया दुगनी सामर्थ के साथ आया वो मनुष्य था, जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में आया तो वो एक मनुष्य था। देखा, अंतिम दिनों में जब सांझ का उजियाला चमकना आरंभ करेगा तो आंखें खुल जाएंगी और आप देखेंगे कि आप कहां जा रहे हैं। अब देह पहली पूरी बन चुकी है, अपने पैरों पर खड़ी है, पवित्र आत्मा द्वारा हिलते हुए गति प्राप्त कर रही है। क्या वही चीज जो भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर मंडराती थी जिसने बाइबल लिखी? वही पवित्र आत्मा देह में आ रही है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई है, पवित्र आत्मा में चलती है, हर संस्था से, हर जातीय भाषाओं और लोगों से बाहर है। एक साधारण महिला यहाँ है, वो इस संस्था या उस संस्था से, इस संस्था से संबंध नहीं रखती, वो कहीं और से आई है और वो आज प्रातः आई और वो चित्र लाई, उसने मेरे पुत्र को दिया जो कि बहुत अचंभित हुआ था। मैं नहीं जानता कि उसने कभी इस विषय में सुना था या नहीं, मैं नहीं जानता। उसके पास प्रभु के 7वें दूत का चित्र था जो 7 कलीसियाई कालों के समय था, 7 मोहरों के खुलते समय वहाँ था। जब वो खुली, उसने कहा स्वप्न में उसने पीछे मुड़कर देखा कि वो आकाश में खड़ी है। उसने पीछे मुड़कर वहाँ देखा और देखा कि कोई सफेद पोशाक में आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे उसने कहा, ऐसा लगा कि भाई ब्रणम वो आप थे, और कहा उस झुंड में बताया आपके पीछे बहुत रंग जाति के लोग थे झंडों के साथ, जॉर्जिया, अलबामा और विभिन्न स्थानों से, जो आगे बढ़ते हुए ऊपर की ओर आ रहे थे जहाँ दर्शन में मसीह प्रकाशित किया जा रहा था। ओ हालेलुया, हम अंतिम दिनों में हैं और दिनों के अंतिम घंटों में हैं। क्या आप उसे उसके वचन में देख पाते हैं और उसका सारा वचन यहाँ हमारे सामने प्रकट हुआ है? ओ परमेश्वर की जीवित कलीसिया, अपने पैरों पर खड़ी हो जा और तेरे अंदर जो कुछ भी है पूरे से विश्वास कर। उस पहिए को पकड़ लो, उसे बीच में से पकड़ लो और आपका हर चलन कार्य जो आप करते हैं उसे स्थिर करने दो। प्रत्येक विचार जो आप में है होने दे कि वो आपके अंदर की ऊंचाई के द्वारा नियंत्रित हो, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में जो इस समय के लिए है उसमें है, इस सांझ के उजियाले में जो उजियाला चमक रहा है, चमगादड़ का अंधापन। आप उजियाला कर दीजिए और चमगादड़ इतनी अंधी हो जाएगी कि उड़ न सकेगी। बड़ा उल्लू, वे सब रात के शिकारी और इस प्रकार की चीजें जैसे पानी की छोटी मछली, ये दिन में नहीं देख सकते, वो नहीं जानते कि ये सब क्या है, वो नहीं देख सकते। और सांझ का उजियाला आ चुका है। हर दृष्टांत, जहाँ कहीं भी हम बाइबल की प्रकृति में हम जाते हैं, उस मूरत को जो दानियल ने देखी और समय के राजा और हर एक ने देखी वे सब बातें, प्रत्येक हर प्रकार से हर गति देह का हर स्थान निर्धारित अवस्था में हमें दर्शाता है कि हम किस समय में रह रहे हैं। इससे हटकर और कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता। आज का एक चलन था प्रेम, वेस्ली, नेव का एक आंदोलन था लूथर, प्रेम, इससे बढ़कर कभी नहीं हुआ, ये वेस्ली आंदोलन कहलाया। उन्होंने सारे संसार में मिशनरी भेजे, एक महान आंदोलन अपने युग से पहले किया गया। तब पेंतेकोस्टल युग आया, वो भिन्न भिन्न उंगलियों और बातों में आया, जुबान और का और नाक का और वगैरह वगैरह का पेंतेकोस्टल युग। अब ये आँखों के युग में है। कितना अच्छा है कि आपको आँखों की आवश्यकता हो या उजियाले की आवश्यकता हो। यदि उजियाले को देखने के लिए आँख ना हो, देखने के लिए पहले आँख होनी चाहिए। और जब वो आ जाती है तब उसने सात मोहरें खोली और सांझ का उजियाला प्रकट किया। तब उसने सारे भेदों को जो सारी कलीसिया युग से गुप्त थे अब खोल दिया है, जैसे कि उसने प्रकाशित वाक्य 10:1-7 में प्रतिज्ञा की है। आज हम यहाँ वचन के बीच में स्थित हैं और वचन हम पर यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया जा रहा है। तो फिर ये परमेश्वर का वचन है और उसकी प्रजा होने के नाते हमें उसके पास इसे समझने के लिए जो कि लेखक है जाना चाहिए, ताकि यह प्रकट हो, ओ प्रभु तेरे पास मेरे करने के लिए क्या है। यदि मुझे बाहर जाकर सुसमाचार प्रचार करना चाहिए या मैं घर पर बैठूं, ये क्या है, इसका कोई मतलब नहीं। यदि मुझे एक अच्छी पत्नी होना चाहिए, यदि मुझे एक अच्छी माँ होना चाहिए, यदि मुझे ये या वो करना चाहिए, जो भी हो, यदि मुझे एक किसान होना चाहिए, यदि मैं, प्रभु चाहे जो भी हो, आपके पास मेरे करने के लिए जो भी होगा। क्या शाऊल नहीं चिल्लाया था कि प्रभु मेरे करने के लिए क्या है। वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहा था ताकि सारी कलीसियाओं को कैद कर दे, परंतु तब वो चिल्ला उठा, तेरे पास मेरे करने के लिए क्या है। जब वो रोशनी चमक उठी एक आग के खंभे की तरह जो उसके ऊपर था, तू मुझसे क्या कराना चाहता है। सोचिए, इसे समाप्त करते हुए ये एक अच्छा वचन है, और कहिए, प्रभु आपके पास मेरे करने के लिए क्या है। जब मैं इस वचन को इस समय सिद्धता से प्रकट होते हुए देख रहा हूँ, तो प्रभु मेरे करने के लिए आपके पास क्या है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। मैं यहाँ सबसे कहता हूँ कि अपने हृदयों को जांचें और ये प्रश्न करें, प्रभु आपके पास मेरे करने के लिए क्या है। और आप लोग जो राष्ट्र में टेलीफोन पद्धति से सुन रहे हैं, आप अपने सिरों को झुकाएं और पूछें, प्रभु आपके पास मेरे करने के लिए क्या है। हम देख रहे हैं कि हम अंतिम दिनों में हैं और अंतिम घड़ियों में ये बिल्कुल ठीक हमारे सामने है और साधारणता में प्रकट हुआ, आपके पास मेरे करने के लिए क्या है। प्रिय परमेश्वर, जबकि ये लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं स्वयं भी आपसे पूछता हूँ, प्रभु आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। जैसा कि मैं महसूस करता हूँ कि हर दिन इसके लिए गिना जाना चाहिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे, प्रभु कि मैं हर दिन को आपके सम्मान और महिमा के लिए जीऊं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हम में से प्रत्येक की सहायता करेंगे जो इस राष्ट्र में हैं, और उनकी भी जो यहाँ आराधनालय में उपस्थित हैं, जबकि हम आपने हृदय को जांचते हुए कहते हैं, प्रभु आपके पास मेरे करने के लिए क्या है। मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु कि आपके राज्य और पक्ष को आगे बढ़ाऊं। परमेश्वर, इसे ग्रहण कीजिए, हमारे हृदयों को जांचिए और परखिए। यदि हम में कोई अपराध पाया जाता है प्रभु, कोई स्वार्थ पाया जाता है, कोई खराब उद्देश्य या मनसा पाई जाती है, तो ओ परमेश्वर हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर दें, जिसकी मृत्यु और जी उठने को हम नम्रता पूर्वक ग्रहण करते और मानते हैं, और विश्वास के द्वारा हम न्यायोचित ठहरते हैं कि उसने ये किया है, और हम प्रसन्नता पूर्वक उसके उद्धार की योजना को ग्रहण करते हैं जो कि आपने हमें दी है। पिता, हम आज के दिन के संदेश के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसका हम विश्वास करते हैं और जिस पर हम स्थिर हैं, जिसको हम जानते और विश्वास करते हैं कि ये आपका वचन और आपका संदेश है। दूसरे लोगों से भिन्न होने के लिए नहीं, परंतु इसका प्रयत्न करते हुए कि यीशु मसीह की तरह होते चले जाएं, जो कि हमारा आदर्श है। प्रिय परमेश्वर, यहाँ बहुत सारे रुमाल रखे हैं और यहाँ चारों ओर बीमार लोग हैं, और प्रभु मैं स्वयं भी आज प्रातः थका उबा हुआ हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी सहायता करेंगे। आपने हमारी बहुत बार सहायता की है प्रिय परमेश्वर, हम आपकी ओर सामर्थ्य के लिए देखते हैं, आप हमारी सामर्थ्य हैं। आपने बहुतों की सहायता की प्यारे परमेश्वर। उस दिन जंगल के बारे में सोचता हूँ जब भाई बैंकवुड के साथ जा रहे थे, जब डॉक्टरों ने उनके हृदय की दशा इतनी खराब थी कि वे बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे, तब सोचकर कि कैसे मैं थोड़ा सा जानता था कि उस दर्शन के बाद पहाड़ों पर चलते हुए मुझे एक सिंह मिलना चाहिए और मुझे उस सिंह को मरा हुआ देखना चाहिए, और तब वहां से उतरते हुए और टूसान के फर कैफेटेरिया में खड़े हुए, उनके कपड़े ढीले ढाले लटक रहे थे, उनकी आंखें झुकी हुई थीं। मैंने कहा, परमेश्वर, यदि आप दर्शन में ये दिखा सकते हैं कि सिंह कहाँ है, तो सच में आप भाई वुड के विषय में भी दिखा सकते हैं। और तब ये आता है, अपने हाथ उनके ऊपर रखो, और आज वो यहाँ हमारा भाई बैंक फिर से मजबूत हो गया है और उन पहाड़ों पर ऊपर नीचे भाग रहा है। प्रिय परमेश्वर, हम तेरा कैसे धन्यवाद करें। आप हम सब के लिए वही परमेश्वर हैं जैसे आप भाई वुड के लिए थे। मैं जानता हूं कि आप उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि वे आपके सच्चे और निष्कपट सेवक हैं। और प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हम में से हर एक के साथ व्यवहार करेंगे और हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमारी शारीरिक बीमारियों को चंगा करेंगे। प्रभु, हमें प्रतिदिन अपने समान बनाते जाएं जब तक हम यीशु मसीह के कदमे पूरे ना हो जाएं। प्रभु, इसे ग्रहण करें। अब मैं विश्वास करता हूं कि आपने हम में से हर एक के हृदय को जांचा है। हम जानते हैं कि क्या करना है। अब हम आपसे आशीष मांगते हैं यीशु के नाम में। और जब हमारे सर झुके हुए हैं, तो क्या कोई यहाँ पर जो उपस्थित है या टेलीफोन पर राष्ट्र में कहीं भी जो ये चाहता हो, जबकि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके सर झुके हुए हैं, इस समय अपना हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं। आप केवल यही कर सकते हैं। आज प्रातः यहाँ बहुत भीड़ है। सिर्फ अपना हाथ परमेश्वर की ओर उठाकर कहें, परमेश्वर, मुझे यीशु के समान बना दें। मैं चाहता हूँ कि मैं और यीशु के समान हो जाऊँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ से बाहर पूरे राष्ट्र में हर तरफ हाथ उठे हैं, एक ठोस समूह। मेरा भी हाथ उठा हुआ है, मैं भी उसी के समान बनना चाहता हूँ। प्रभु, मुझे जांचें और यदि कोई बुराई मिलती है तो उसे निकाल दें। मैं चाहता हूँ, हम यहाँ पर इतने लंबे समय से किस लिए हैं, तब भी हम यहाँ से जाने वाले हैं, चाहे आप, इससे कोई मतलब नहीं आप क्या हैं, आप कितने धनवान, कितने निर्धन और कितने जवान, कितने बूढ़े हैं। कल मैं वहाँ पहाड़ पर निर्धन लोगों के झुंड के पास उस गड्ढे पर खड़ा था। वहाँ एक छोटा परिवार था। मैं एक व्यक्ति से परमेश्वर के विषय में बहुत देर तक बातें करता रहा। उसकी प्रिय पत्नी, 7 या 8 बच्चे उसके साथ आई। वह स्वयं दुबला पतला लंबा व्यक्ति था और $2 प्रतिदिन पर कार्य की कोशिश करता था, और एक व्यक्ति ने उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी रहने के लिए दे दी थी। और उसकी पत्नी अब एक और बालक को जन्म देने पर थी और उसके पास चौड़े फाइल की कुलाड़ी थी। वो लकड़ी काट कर नीचे की ओर खींच रही थी। एक कूले पर बच्चा था, दूसरी ओर से डाली खींच रही थी, उसे काटे और गुजबरी बर्तन में जमा कर रही थी कि शरद ऋतु में भूख से बच सके। ओ, हमें उसके लिए कितना बुरा लगा। भाई वुड और मैंने एक ट्रक लिया और उसके लिए बहुत सी लकड़ी काट कर ले आए। वो स्त्री वहाँ खड़ी हुई बहुत आभार मान रही थी। मुझे उसके लिए दुख लगा और हम उनके लिए प्रार्थना करते रहे। और उसके छोटे बच्चे को मिर्गी आती थी। हमने जाकर छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। और एक दिन उसके पति को हर्निया हो गया और वो गया। मैं उससे बातें कर रहा था, वो सिगरेट पी रहा था। वे दोनों, वो तंबाकू का प्रयोग करती थी और वो भी, वे साधारणता पहाड़ी लोग थे। और तब मैं इस विषय में उनसे बातें कर रहा। और कल प्रातः जब मैं दिन निकलते ही वहाँ गया और वो सामने से अपने हाथ समेटे आ रहा था, उसने कहा, भाई बिली, अब मैं एक बदला हुआ मनुष्य हूँ। उसने कहा, मैंने अपनी अंतिम सिगरेट पी ली और अब मैं प्रभु की ओर हूँ। वो कहने लगी, मैंने भी अपनी अंतिम सिगरेट पी ली। ओ बीज बो, मैं प्रभु जिसने सींचा है, मैं उसे दिन रात सींचूंगा कि कोई उसे मेरे हाथ से ना ले सकेगा। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, अब दया कर और हमारे हृदय की इच्छा को पूरा कर, क्योंकि हम हृदय से आपकी सेवा करना चाहते हैं। अब हे पिता, सब तरफ ये आपके हाथ में है, ये आपके बालक हैं, और अपने अनुग्रह के अनुसार इनसे व्यवहार कर प्रभु, न्याय से नहीं परंतु अनुग्रह से, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप उससे प्रेम करते हैं अपने पूरे हृदय से। अब जिनके रुमाल थे वे इन्हें ले जा सकते हैं। और अब हमारी सभाएं, मैं सोचता हूँ 7 से थोड़ा पहले आरम्भ होंगी या ऐसे ही कुछ होंगी। भाई नेविल घोषणा कर देंगे अभी थोड़ी देर में उनके आरंभ होने के बारे में। और मेरे विचार से आज प्रातः कोई बपतिस्मा है। पानी तैयार है। यदि यहाँ कोई ऐसा हो जिसका बपतिस्मा अभी तक हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में ना हुआ हो, क्यों? ये निश्चित है बपतिस्मे के लिए पानी तैयार है। हम सब सेवक भाइयों की सराहना करते हैं। भाइयों, मैं देखता हूँ कि किस प्रकार आपकी सेवाएं ठीक चल रही हैं। भाई परनेल और भाई मार्टिन, ओ उनमें से बहुत से यहाँ पर उपस्थित हैं। भाई ली वॉयल, ओ यहाँ तो सारी जगह में बहुत से सेवक हैं। निश्चय ही हम आपके यहाँ आने के लिए सराहना करते हैं। सारे संसार में आप हमारे साथ संगति करते हैं। हो सकता है कि आप मेरे साथ इस पर बिल्कुल पूरी तौर से सहमत ना हो। मैं आपसे नहीं कहता कि आप सहमत हो, केवल एक बात कि आप इस पर विचार करें। आपने जो मुझे बताया है मैं विचार करता हूँ। यदि सेवकगण टेप लें और कहें कि भाई मैं इस पर सहमत हूँ, तो मेरे भाई ये ठीक है। आप कुछ भेड़ों के चरवाहे होंगे, आप जैसा चाहें उन्हें खाना खिलाएं। मैं अपने पूरे यत्न करता हूँ कि वचन के साथ बना रहूँ, वो जो परमेश्वर के लिए मेरे हाथों में सौंपे गए हैं, क्योंकि भेड़ भेड़ का खाना चाहती है। ये बिल्कुल ठीक है। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं। हर वचन जो निकलता है, सारा नहीं, केवल अब एक शब्द नहीं और तब, परंतु हर वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, यही है जिसके द्वारा संत को जीना है। आइए, जब हम अपने सरों को झुकाए हुए हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और भाई नेविल, क्या आप इनसे कुछ कहना चाहते हैं? भाई मान, ठीक है। हर कोई अच्छा महसूस कर रहा है, कहिए आमीन। ठीक है, अब आइए अपने सिरों को झुकाएं। मैं भाई से कहना चाहता हूं कि यदि वो यहां आकर या आ सकते हैं, यदि आप वहीं आ जाएं, भाई वाइल, यदि आप आ सकते हैं। हमारे भाई वाइल यहां हैं जो किताबें लिखते हैं। अब उन्होंने सात कलीसिया कालों की पुस्तक तैयार कर ली है और सात मोहरों की पुस्तक पर कार्य कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जल्द ही वे आ जाएंगी। ठीक है भाई ली वाइल, परमेश्वर आपको आशीष दे।